आज के हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर एंड चीफ गेस्ट रिस्पेक्टेड मिस्टर महावीर सिंह फोगाट, कृपया आप मंच पर पधारें। आप कल भी इनसे परिचित हुए होंगे और भली भांति जानते हैं कि जो अभियान हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इन्होंने तो अपनी बेटियों को ही इतना सशक्त कर दिया कि देश ही नहीं बल्कि दुनिया में उनका और हमारे देश का नाम रोशन हुआ है। कृपया एक बार तालियां बजाएंगे। मैं निमंत्रण करता हूं मिस्टर दिनेश कुमार शुक्ला जी। मिस्टर दिनेश कुमार शुक्ला जी, डिविजनल सिक्योरिटी कमिश्नर आरपीएफ बीकानेर, आप भी मंच पर पधारें। आपने बहुत ही बिजी शेड्यूल में से हमारे इस सहज निमंत्रण को स्वीकार किया, आपका हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत। एक बार निवेदन की शुक्ला जी के लिए भी हम सब कृतज्ञ ध्वनि से वेलकम। मिस्टर ईश्वर सिंह दहिया, रेसलिंग कोच ऑफ साक्षी मलिक रोहतक, हरियाणा प्रदेश रोहतक। साक्षी मलिक, जो आप सभी जानते हो कि परचम लहराया दुनिया में, आप उनके कोच, आइए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। मिस्टर ईश्वर सिंह दहिया, मैं रिक्वेस्ट करता हूं मिस्टर वीरेश यामा जी। वीरेश यामा इंडियन स्केटिंग टीम के कोच, जो कि सिकंदराबाद से इस स्पोर्ट्स विंग में हम सबके बीच पधारे हैं, आपका भी अभिनंदन। कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें मिस्टर वीरेश यामा जी। और हम सबके बीच एक हस्ती और, कैप्टन टी जायसवाल जी, इंडियन नेवी मुंबई से पधारे हैं। कैप्टन टी जायसवाल जी, आप भी आएं और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आज का ये इनॉग्रेशन सेशन हम सबके बीच माइंड सप्लीमेंट्स फॉर हाई परफॉर्मेंस, इस टॉपिक को लेकर के हम सब एकत्रित हुए हैं। हम सबके बीच हमारे हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर जगबीर भाई जी आ चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। मैं निवेदन करूंगा मेहरचंद भाई जी, बीके मेहरचंद भाई जी आए और अपना स्थान ग्रहण करें। आप पंजाब जोन के कोऑर्डिनेटर हैं और करनाल से हम सबके बीच पधारे हैं। बीके मेहरचंद भाई आए और अपना स्थान ग्रहण करें। निवेदन, हमारे बीच आदरणीय शशि बहन जी पधार चुके हैं, नेशनल चेयरपर्सन। हम सभी आपके लिए भी एक जोरदार ताली से स्वागत करते हैं। मंच पर आसीन सभी अतिथियों का बहुत बहुत दिल से अभिनंदन। बहनों से निवेदन कि मंचासीन अतिथियों को फूलों और बुकों के द्वारा, बैजेस के द्वारा अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। फोगाट सर, कुलदीप दीदी जी, मिस्टर दिनेश कुमार शुक्ला जी, कैप्टन जायसवाल जी, मिस्टर वीरेश यामा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बैजेस के द्वारा हमारे आए हुए अतिथियों का वेलकम। रिस्पेक्टेड शुक्ला जी, शकबीर भाई, कैप्टन जायसवाल जी, आप भी एक बार तालियां बजा करके हमारे इस कार्यक्रम में पधारे अतिथियों का, बहनों का स्वागत। कुलदीप तशरीफ दे दीजिए, हम सबके बीच पधार चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत बीके मैरचंद भाई। स्वागत की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम सबके बीच कुमारी हैक्सी जो कि सूरत से हम सबके बीच एक वेलकम डांस प्रस्तुत करेंगी। कुमारी हैक्सी बहुत ही सुंदर नृत्य इस बच्ची ने हम सबके बीच रखा. थैंक यू वेरी मच. अभी इस स्वागत की श्रृंखला में ही हम सबके बीच बीके नितिन भाई, जो कि ज्ञान सरोवर एकेडमी में ही जब से ये शुरुआत हुई है सेवाएं दे रहे हैं, एक सुंदर गीत के द्वारा हम सबका वेलकम करेंगे. और आप मल्टी वॉइस के भी सिंगर हैं, यदा कदा हमने आपकी आवाज सुनी है. बीके नितिन भाई,
शुभ स्वागतम, शत स्वागतम, शुभ स्वागतम, शत स्वागतम, शुभ स्वागतम, शत स्वागतम. तो अपने हर्ष का मिलता कहीं न अंत है, आज तो अपने हर्ष का मिलता कहीं न अंत है. आगमन से आपके आनंद ही आनंद है, आगमन से आपके आनंद ही आनंद है. शुभ स्वागतम, शत स्वागतम, शुभ स्वागतम, शत स्वागतम. मंदिर सजता मूरत से और अंदर जैसे तारों से, ज्ञान सरोवर का सजा है आंगन भारत माँ के दुलारों से. मंदिर सजता मूरत से और अंदर जैसे तारों से, ज्ञान सरोवर का सजा है आंगन भारत माँ के दुलारों से. स्वागत और सत्कार का मौसम हो, स्वागत और सत्कार का मौसम महका चिर बसंत है. आगमन से आपके आनंद ही आनंद है. शुभ स्वागतम, शत स्वागतम, शुभ स्वागतम, शत स्वागतम. आशाओं के दीप जले हैं, विश्वासों में हिले मिले, सुमन सफलता के खिलेंगे साथ हमारे आप चले. आशाओं के दीप जले हैं, विश्वासों में हिले मिले, सुमन सफलता के खिलेंगे साथ हमारे आप चले. नया नहीं ये बहुत पुराना, नया नहीं ये बहुत पुराना, अपनों का संबंध है. आगमन से आपके आनंद ही आनंद है. शुभ स्वागतम, शत शुभ स्वागतम शत स्वागतम युग धरती पे सजाना हम सब का संकल्प है राजयोग से ही होना अब जग का कायाकल्प है स्वर्णिम युग धरती पे सजाना हम सब का संकल्प है राजयोग से ही होना अब जग का कायाकल्प है सभी तो परिवर्तन का नारा सभी तो परिवर्तन का नारा हमने किया बुलंद है आगमन से आपके आनंद ही आनंद है आज तो अपने हर्ष का मिलता कहीं अंत है आगमन से आपके आनंद ही आनंद है शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम
बहुत ही सुंदर शुभ स्वागतम शत स्वागतम आप सभी का प्रेम पूर्वक स्नेह पूर्वक आप सभी का इस ब्रह्मा कुमारीज एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत अपने लिए भी आप सभी एक बार ताली और नितिन भाई के लिए भी ताली हम बजाएंगे आज के इस सत्र में हम सबके बीच हमारी आदरणीय कुलदीप दीदी जी जो कि नेशनल कोऑर्डिनेटर स्पोर्ट्स विंग की हैं और आप शांति सरोवर हैदराबाद में जो हमारा कैंपस है उसकी डायरेक्टर हैं आप सहज और सरल वक्तव्य में हम सबके सामने कल भी प्रस्तुत हुए थे और आज की नोट स्पीच में मैं निवेदन करूंगा आदरणीय बीके कुलदीप दीदी जी हम सबके बीच अपना रखेंगे की नोट स्पीच
ओम शांति परम पूज्य परम पिता परमात्मा के अति प्रिय संतानों आदरणीय मंच पर सभी महानुभावों एवं सभा में उपस्थित भाइयों और बहनों तथा खेल जगत से जुड़े हुए हमारे स्पोर्ट्स पर्सन्स सभी का अभिनंदन है आज हम माइंड सप्लीमेंट फॉर हाई परफॉर्मेंस पर विचार करेंगे और एक दूसरे के अनुभव से अवगत होंगे क्योंकि हर खिलाड़ी के मन में ये होता है मेरी बेस्ट परफॉर्मेंस हो लेकिन आज की दुनिया में इतना स्ट्रेसफुल वातावरण है उसके प्रभाव में छोटे बड़े सभी प्रभावित हैं और हम जानते हैं जब हम स्ट्रेस एंजाइटी में आकर कोई भी कार्य करते हैं हम सफल नहीं हो पाते हैं लेकिन इसको कम कैसे किया जाए इसकी युक्ति किसी व्यक्ति के पास नहीं है सिर्फ लोग मेडिटेशन करना चाहिए ऐसा सजेशन देते हैं लेकिन मन को कैसे कंट्रोल करना, मन को कैसे समझाना, मन को किस प्रकार के विचार देना, कैसे अपने माइंड को पॉजिटिव बनाना, अपने मन को कैसे सशक्त बनाना, इसकी विधि कोई बताने वाले नहीं है। जो इस सृष्टि का रचयिता है, सारी दुनिया का जो खेल बनाने वाला, कहीं सृष्टि ड्रामा को चलाने वाला डायरेक्टर परमात्मा ही इस समय आकर हम सब सृष्टि मंच पर खेलने वाले खिलाड़ियों को बहुत सुंदर ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग के अभ्यास द्वारा हमारे मन को इतना सशक्त करते हैं कि हर असंभव बात को आप संभव कर सकते हैं। क्योंकि इंग्लिश में इम्पॉसिबल शब्द को अगर आप वर्ड्स देखेंगे, उसमें है आई एम पॉसिबल। तो हमेशा अगर हम ये पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे कि मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। अगर हमारा मन एकाग्र है और हमारा लक्ष्य क्लियर है, तो हम कोई भी कार्य को सफलतापूर्वक अच्छी तरह से परफॉर्मेंस दे सकते हैं। टेंशन में आकर हमने देखा है अच्छे अच्छे खिलाड़ी भी हार जाते हैं, गोल्ड मेडल लेने तक आ जाते हैं, सब तालियां भी बजाते, उस तालियों में भी कभी कभी घबरा जाते हैं और हार कर मना गोल्ड से सिल्वर मेडल पर आ जाते हैं, फिर कहते बस थोड़ा सा ही था, थोड़ा सा ही। तो इस प्रकार से जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, उसको जागृत करने की आवश्यकता है। उसके लिए राजयोग का अभ्यास बहुत आवश्यक है। राजयोग में भी हम विजुअलाइजेशन भी करते हैं, अपने मन को अच्छे एफर्मेशंस भी देते हैं, जिससे हमारा अचेतन मन भी जागृत हो जाता है। कई बार हम सोचते हैं कि कोई व्यक्ति, जैसे कल भी यहाँ मंच पर हमारे फिल्म इंडस्ट्री के भाई साहब बता रहे थे कि किस प्रकार एक व्यक्ति का एक हाथ जाने पर भी उसने लेफ्ट हैंड से भी शूटिंग की, क्योंकि उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड को जागृत किया कि मैं कमजोर नहीं हूं, मैं भी कुछ कर सकता हूं। एक बार हमने हैदराबाद के एक न्यूज़पेपर पढ़ा, मुझे आज तक वो घटना बड़ी अच्छी तरह से याद, मन में वो उसका पिक्चर आता रहता है। बहुत बड़ा एक हार्ट का हॉस्पिटल है मेडिसिटी, जो बिल्कुल सेक्रेटेरिएट के सामने है। बहुत समय वहां कभी कभी बॉम्ब्स के रूमर्स आते रहते हैं, तो आईसीयू यूनिट में फोन आया डॉक्टर्स को कि आपके आईसीयू में हमने बॉम्ब रखा है, 6:30 को ब्लास्ट होने वाला है। तो सभी डॉक्टर्स नर्सेस रनिंग कर रहे थे, और आप जानते हैं आईसीयू में जो पेशेंट्स रहते हैं उनके साथ तो कोई होता ही नहीं है, सिवाय डॉक्टर्स और नर्सेस के प्रोटेक्शन में ही वो रहते हैं। और जब वो छोड़कर भाग रहे हैं, जबकि सभी जो है सीरियस कंडीशन में अपने आप को हिला भी नहीं सकते हैं, चल भी नहीं सकते हैं, सांस भी नहीं ले सकते हैं, उन्होंने पूछा कि क्यों भाग रहे हो, तो उन्होंने कहा कि 6:30 को बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है। सभी अपने मास्क वगैरह उतार करके जो वेंटिलेटर पर थे, ऑक्सीजन पर थे, रोड पर भाग कर आ गए। कैसे भागे आप सोच सकते, शरीर में शक्ति नहीं है, लेकिन उनका सबकॉन्शियस माइंड जागृत किया, उन्होंने विजुअलाइज किया कि अंतिम समय है, मुझे कुछ करना है। अपने आंतरिक शक्तियों को जागृत करने की आवश्यकता है। हमारे अंदर बहुत सुषुप्त शक्तियां हैं आत्मा के अंदर, जिनको हम इन नेत्रों से नहीं देख सकते हैं। मेडिटेशन एक ऐसी शक्ति है जो अचेतन मन को जागृत करती है, जो हमारी सुषुप्त शक्तियों को जागृत करती है, और इस तरह से मनुष्य अपनी मंजिल को तय कर सकता है, मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। एक और उदाहरण है रियल, एक यंग लेडी जिसको छोटे छोटे दो ट्विंस थे, तो उनको डॉक्टर ने कहा कि अभी तो आपकी अंतिम स्टेज है, मुश्किल से वो 30 या 35 वर्ष की थी। बच्चे जो है 3 या 5 साल की उम्र के होंगे दोनों छोटे। उन्होंने कहा कि अभी आपकी अंतिम इच्छा जो है वो पूरी कर लो। तो उन्होंने कहा मेरे पति को और मेरे बच्चों को मुझे मिलना है, तो उनको बुलाया गया। तो उसने अपने पति से एक बात पूछी कि मेरा एक संकल्प है, क्या आप पूरा करेंगे? तो उसने कहा कि पहले बताओ, मैं वायदा नहीं करता, पहले बताओ। उसने कहा मेरे 2 बच्चों के लिए आप दूसरी शादी नहीं करना। उसने कहा सोचूंगा। जैसे उस व्यक्ति ने कहा सोचूंगा, तो उसकी पत्नी जो अंतिम श्वास ले रही थी बेड से जंप लगा करके खड़ी हो गई, बोली तू सोचेगा तो मैं भी नहीं मरूंगी, आज तक जिंदा है। ये है हमारी आंतरिक शक्तियां। तो हम मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, तो ये खेल में जीतना क्या बड़ी बात है। सिर्फ अपने मन को सशक्त करने की आवश्यकता है। उसके लिए रेगुलरली अगर आप मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे, ये मेडिटेशन का राजयोग का अभ्यास जो आप सुबह 7 बजे से सेशन, आज भी फर्स्ट सेशन में आपने आत्मा के विषय में सुना, जिसमें मन बुद्धि संस्कार सहित मैं आत्मा हूं, तो मन बुद्धि संस्कार ये मेरे मंत्री हैं। मैं आत्मा तो स्वयं राजा हूं, मैं जो कहूं वो मेरे मन को मानना पड़ेगा। अपने मन पर हम जीत प्राप्त कर लेंगे तो सारे जगत पर हम जीत प्राप्त कर सकते हैं। जिसका मन कमजोर है वो कोई भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता है। जब मनुष्य मन से हार जाता है ना, डिप्रेशन की स्टेज में, वो व्यक्ति क्या कहता है कि मेरे से कुछ नहीं हो सकता है, मेरे को अभी जीना भी नहीं है, मैं ये भी नहीं कर सकता। हमने देखा बड़े बड़े व्यक्ति जो इतना अच्छा काम करते थे, वो बोलते इतने निराश हो जाते हैं कि मैं अब नहीं कर सकता हूं, मैं पढ़ भी नहीं सकता हूं, मैं खेल भी नहीं सकता हूं। लेकिन राजयोग के अभ्यास से ऐसे चमत्कारी परिवर्तन होते हैं कि वो डिप्रेशन से भी निकल जाते हैं। हम हैदराबाद में एक बार मेडिटेशन कैंप रखा था और साथ साथ हेल्थ कैंप था, तो उसमें एक व्यक्ति वहां से गुजर रहा था और घर से वो निर्णय करके निकला था कि मैं काफी उसके ऊपर कर्जा था, मैं आज तो सुसाइड कर लूंगा, और चिट्ठी भी लिखकर आ गया था घर में कि मैं जा रहा हूं मरने के लिए। तो उसने पढ़ा राजयोग से स्ट्रेस फ्री लाइफ, और 3 डेज के अंदर ये मेडिटेशन कैंप है, तो आ गया अंदर, फॉर्म फिलअप किया, 3 डेज पोस्टपोन किया उसने मरने का, 3 दिन के बाद डिसाइड करूंगा। 3 डेज मेडिटेशन कैंप करने के बाद हम लोग सबसे एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बोलते, वो व्यक्ति पहले उठ के आया। उसने बताया 3 दिन पहले मेरा मन इतना कमजोर हो गया था, ऐसी परिस्थिति थी मेरे ऊपर, लेकिन अब राजयोग से मेरा मन सशक्त हो गया, अब मैंने ये ठान लिया है मुझे जीना है, परिस्थितियों का सामना करना है। तो इस प्रकार से हमारे अंदर ऐसी शक्तियां परमात्मा भरपूर कर देते हैं, जिससे हम अपने जीवन के अनेक परीक्षाओं को पास कर सकते हैं। तो खेल कोई बहुत बड़ी परीक्षा नहीं है, वास्तव में खेल तो मनोरंजन है, इसको हमें खुशी से खेलना चाहिए और देखने वाले को भी खुशी से देखना चाहिए, चाहे कोई भी हारे या कोई भी जीते। क्योंकि एक बार हमारे पास एक कार्डियोलॉजिस्ट आया, बोला हमारे माताजी को थोड़ा, मेरे को मैच देखने का उतना शौक नहीं था, देखती भी नहीं हूं अभी भी, हमारे माताजी को थोड़ा सा हमारी छोटी बहन की लड़की ने सिखाया, तो थोड़ा स्ट्रेस में आ गए कि हमारा इंडिया हार रहा है, खाना नहीं खाए। तो जब डॉक्टर आया तो उन्होंने बोला आप माताजी नहीं देखना, क्योंकि अभी अभी मेरा एक पेशेंट मर गया, जब उसने सुना इंडिया हार गया तो उसको हार्ट अटैक आ गया, तो आप नहीं देखना क्योंकि आप भी हार्ट पेशेंट हैं। तो हम इतने कमजोर होकर के ना देखें कोई भी खेल को, कोई भी जीते। मैंने अपनी माताजी को कहा आपका क्या गया, कोई भी जीते कोई भी हारे, हमारे लिए तो सब भगवान के बच्चे हैं ना। तो हम उस दृष्टि से देखें, क्योंकि एक हारेगा एक जीतेगा, सदा हम जीते तो सामने वाले को तो हमेशा निराशा रहेगी, कभी वो जीते कब हम जीते। तो हम सब भाई भाई हैं, क्योंकि यहाँ परमात्मा हमें सिखाते विश्व बंधुत्व की भावना, पॉजिटिव थिंकिंग कीजिए हर एक के लिए, सब जीतेंगे, कोई नहीं हारेगा, हम सब विजेता हैं, विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हमारी हार में भी जीत है, क्योंकि हम फिर तैयार होते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, एक बार हारे हमेशा के लिए तो नहीं हार गए, हमारे जीवन में बहुत अवसर आएंगे, हम और भी अच्छा खेल सकते, अपनी परफॉर्मेंस को और अच्छा कर सकते हैं। बहुत बार हमारे पास बच्चे आते हैं, यहाँ पर भी एक भाई हैं जो वहाँ बच्चों को लेकर आए थे शांति सरोवर में खेलने के लिए, शायद हरियाणा से, और वो बच्चों ने थोड़ा मेडिटेशन का अभ्यास किया और वो जीत गए। तो इस प्रकार से हम सब राजयोग का इम्पोर्टेंस अगर समझ जाएंगे अपने जीवन में, तो हम सशक्त मन से खेलेंगे, अपनी मनोबल से खेलेंगे, तो विजय हमारे से दूर नहीं है। जैसे कल भी दीदी ने कहा था, विजय हमारे गले का हार है। तो इस प्रकार से हम आप सभी को मुबारक देते हैं कि आप सब इतने अच्छे स्थान पर आए हैं, ये परमात्मा के अवतरण का स्थान है और सर्वशक्तिवान परमात्मा की छत्र छाया में आप सब आ गए, इसलिए आप सदा के लिए विजयी बनकर रहेंगे, सदा विजय के मेडल्स प्राप्त करते रहेंगे। ओम शांति।
थैंक यू वेरी मच। जैसा कि कुलदीप दीदी ने हमें मन के सशक्तिकरण के विषय में बताया, हम सभी जानते हैं कि स्पोर्ट्स भी फिजिकल 10% और 90% मेंटल के द्वारा खेला जाता है, चाहे वो कंसंट्रेशन की बात हो या वो विल पावर की बात हो, या हार और जीत में भी जो व्यक्ति हारता है तो वो मन से हारता है। कहते भी हैं कि हारा वो नहीं जिसने बाजी हारी है, हारा वो है जिसने हिम्मत हारी है। तो बहुत ही सुंदर रूप में आपने बताया कि कैसे राजयोगा को हम राजयोगा के द्वारा, इसकी प्रैक्टिस के द्वारा अपने मेंटल लेवल को हाई करें। और एक अनाउंसमेंट है कि ये जो हमारा इनॉग्रेशन प्रोग्राम चल रहा है वो पीस ऑफ माइंड पर इसका लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। अभी मैं निवेदन करूंगा हम सबके बीच, बीके जगबीर भाई जो कि हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर स्पोर्ट्स विंग माउंट आबू में आप सेवाएं पिछले इस 25 वर्षों से आप सेवाएं दे रहे हैं, आपने एयरफोर्स में इंजीनियरिंग की जॉब छोड़कर इस सेवा को अपनाया और अनेक स्थानों पर आपने रेसलिंग और बॉक्सिंग में भी मेडल लिए हैं, और आज भी इस उम्र में भी आप मैराथन में रेगुलर पार्टिसिपेट करते हैं। हमें स्पोर्ट्स विंग के बारे में बताएंगे बीके जगबीर जी।
ओम शांति। मंच पर उपस्थित वक्तागण, सभा में उपस्थित सभी भाई और बहनों, स्पोर्ट्स विंग और कॉन्फ्रेंस के बारे में मैंने थोड़ा कल आपको बताया था, तो आज एक थोड़ी सी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि हमारी कैसे सेवाएं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रही हैं। 2000 से स्पोर्ट्स विंग के द्वारा यहाँ पे भी ये जो कॉन्फ्रेंस होती है एनुअल कॉन्फ्रेंस, इसके अलावा हमारे शांति सरोवर हैदराबाद में, ओम शांति रिट्रीट सेंटर दिल्ली में, इसी टाइप के कैंपस हैं, वहां पे भी ऐसी कॉन्फ्रेंसेस वर्कशॉप सेमिनार्स हमारे समय समय पे चलते हैं। तो इसके अलावा भी हमने इसका वो कॉन्फ्रेंस से अलग कुछ एक्टिविटीज भी की हैं, मैराथन जैसे माउंट आबू में स्टार्ट किया 2011 में, बहुत अच्छी मैराथन हुई और एनुअल इवेंट तब से स्टार्ट है। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कैसे हमारी कॉन्फ्रेंसेस कई फेजेस में, अभी जो लास्ट इसमें आप देख रहे हैं माउंट आबू की 5 से 9, तो ऐसे ये हमारे स्पोर्ट्स के प्रोग्राम्स चलते रहते हैं और एक गवर्नमेंट के साथ हमने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट, तो पहले तो रियो ओलंपिक गेम्स के लिए स्टार्ट किया था, तो अभी वो कंप्लीट हो गया है, तो 2020 के लिए जो आपने देखा हमारे ऑनरेबल स्पोर्ट्स मिनिस्टर विजय गोयल जी ने जो मैसेज भेजा, तो 2020 का जो प्रोजेक्ट है उसमें सभी स्टेट डिस्ट्रिक्ट की नेशनल सब जूनियर जूनियर सीनियर टीम्स, तो इनके साथ ज्यादा हमारे जो माइंड पावर के सेशंस हैं वो चलेंगे, साथ के साथ हम स्पोर्ट्स एसोसिएशन और फेडरेशन के साथ भी कईयों के साथ टाई अप किया है कि हमारी जो ये ट्रेनिंग है इसको ऑफिशियल रूप से हम उनके साथ मिलकर के करें, और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को भी हमने लिखा कि हमारी ये जो ट्रेनिंग है इसको ऑफिशियल रूप से हम आपके साथ मिलकर के काम करना चाहेंगे। तो रिसेंटली चंडीगढ़ में मुझे ओलंपिक टास्क फोर्स की जो एक मीटिंग थी उसमें भी हमें बुलाया था डॉक्टर जीएल खन्ना ने, जो कि ओलंपिक टास्क फोर्स के 9 मेंबर हैं, उनमें वो भी एक मेंबर हैं, तो उन्होंने जब बताया कि आप ये काम कर रहे हो तो ओलंपिक टास्क फोर्स में भी हमारी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट होने की उम्मीद है। तो ये मैराथन मैंने आपको जैसे दिखाया कि माउंट आबू में एक ट्रेल हाफ मैराथन होती है, इंटरनेशनल ट्रेल हाफ मैराथन, तो 9 किलोमीटर पूरा ट्रेल मैराथन है जो टाइगर पाथ कहते हैं, वो कंप्लीट करने के बाद पहले हम पांडव भवन से स्टार्ट करते थे, अभी पोलो ग्राउंड में कंप्लीट होती है, और ये वर्ल्ड की 7 बेस्ट मैराथन में एक काउंट होती है। इंडिया से ये अकेली ट्रेल मैराथन है जो इतनी एडवेंचर के रूप में ली जाती है, तो इसके लिए आप ताली भी बजा सकते हो। ये कुछ इवेंट हैं, हमारी जयंती बहन शशि दीदी इन्होंने स्टार्ट किया था जो इवेंट, सबसे पहले शांति वन से और यहाँ माउंट आबू तक स्टार्ट की थी 21 किलोमीटर, उसमें हमारे मोहन भाई भी पार्टिसिपेट किए थे, अभी शायद आए नहीं है, तो ये मोहन भाई ये इन्होंने 60 इयर्स की एज में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। आगे देख रहे हैं फॉरेन के भी इसमें एथलीट्स आए थे, हमारे नगर पालिका की अध्यक्ष वो साइड में शशि दीदी के साथ लियास त्रिवेदी जी जो कि बहुत अच्छा रनर हैं, आपने देखा होगा ये लॉन्ग डिस्टेंस में। ये भी कुछ मेमोरीज हैं माउंट आबू मैराथन की। फिर जैसे मैंने बताया आपको बैडमिंटन साइना नेहवाल के जो कोच हैं मोहम्मद आरिफ गोपीचंद पुलेला जी, साथ के साथ इनके फादर डॉक्टर हरवीर सिंह नेहवाल, तो इन्होंने अपने इनिशिएटिव से, क्योंकि कई बार क्या होता है गवर्नमेंट को हम लिखते हैं तो वो कई बार हाँ भी कह देते हैं, कई बार कहते हैं कि नहीं नहीं हमको ये ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन कोचेज अपने लेवल से भी उन्होंने प्रोग्राम हमें कराए, तो ये उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कैसे बैडमिंटन में हम कॉमनवेल्थ गेम्स में भी रहे इनके साथ। फिर ये देख रहे हैं आप सन्नी थॉमस सर, वहां मृत्युंजय भाई और जयंती बहन गए थे माइंड पावर का ट्रेनिंग लेने के लिए, और तब से शूटिंग में रेगुलर हमारे कैंप्स चलते हैं। ये रेसलिंग टीम आप देख रहे हैं, हमारा जो ओआरसी है उसमें भी रेसलिंग टीम पूरी गई थी, यहाँ गीता फोगाट ये एक प्रोग्राम में, सुशील कुमार जी आप सुरेंद्र भाई जालंधर से, तो वहां भी उन्होंने एक सेशन लिया था, शशि दीदी ने एक, सतपाल पहलवान जी ने रेसलिंग स्टार्ट की बवाना में, तो उसमें आपने वहां जाकर के स्टार्ट किया, तो हर गेम के अंदर हमारी किसी न किसी तरह से इन्वॉल्वमेंट रहती है, चाहे ट्रेनिंग कराएं, चाहे उनको ब्लेसिंग्स दें, चाहे उनको कुछ गिफ्ट दें, मोटिवेट करें। ये आप देख रहे हैं हमारी रेसलिंग टीम, हमारी आशा दीदी जी उनको ट्रेनिंग दे रही हैं। ये वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप थी जिसमें एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर हमारी शशि दीदी को बुलाया था, तो सुमित्रा दीदी हमारे दिल्ली जोनल कोऑर्डिनेटर, ऐसे करके क्रिकेट की सेवाएं भी 2011 में आप देख रहे हैं। ये बेंगलोर में हमारी कुछ सिस्टर्स वहां पे गई जहां ये टीम रुकी हुई थी, तो उसमें बीच बीच में प्लेयर्स जब उनका मैच होता था तो उससे पहले आकर के उनकी काउंसलिंग करना, उनको साइकोलॉजिकली पावरफुल बनाना, तो ये सेशंस वहां चलते थे। ये 10 दिन पूरा टीम के साथ रहे, फिर आप देख रहे हो कि जयंती दीदी सचिन तेंदुलकर को राखी बांध रही हैं, तो हम तरह तरह से सेवाएं करते हैं। ट्रेनिंग के अलावा ये भी एक सेवाओं का एक प्रोसीजर है। उधर देख रहे हैं गायत्री बहन मुंबई कोलाबा से विराट कोहली को कुछ टिप्स देते हुए। फिर अभी रिसेंटली प्रेमचंद डेगरा जी जो इंडिया के पहले वर्ल्ड चैंपियन बने बॉडी बिल्डिंग में 1988 में, तो उन्होंने ये नाम सजेस्ट किया कि आप ब्रह्म कुमारी की स्पोर्ट्स विंग को भी आप इन्वॉल्व करो, जो मैंने कल आपको एग्जाम्पल दिया था। तो ये अंकुर शर्मा है जो कि एक महीने पहले एशिया में सेकंड थे, और राजेंद्रन मनी फ्रॉम चेन्नई, मुरली कुमार फ्रॉम इंडियन नेवी, वो केरला से। तो तीनों को, दो को तो गोल्ड मेडल मिला और एक को ब्रॉन्ज मेडल मिला ये 10 दिन की ट्रेनिंग के बाद। तो ये आप देख रहे हैं, ये इनविटेशन लेटर है बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन से जो साइड में देख रहे हैं। तो ऐसे सेवाओं का बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं। फिर एक बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले 16 पर्वतारोही थे, तो वहां की जो फेडरेशन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट था, उन्होंने बताया कि भाई ये ट्रेनिंग तो बहुत यूजफुल है, और इतनी विकट परिस्थिति होती है एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए, तो वहां हमें ये ट्रेनिंग की बहुत जरूरत है। तो मैं और हमारे साथ बलराम भाई बैठे हैं बीच में, बलराम भाई, तो हम दोनों ने वहां ट्रेनिंग दी 13,000 फीट की हाइट पे, और 16 के 16 पर्वतारोही बहुत अच्छे तरह से उन्होंने अनुभव सुनाया कि हमने ये कंप्लीट किया और पहले से कम एग्जर्शन हुआ। उसमें कुछ ऐसे भी थे दो या तीसरी बार जा रहे थे। ये आप देख रहे हैं चाइना बीजिंग ओलंपिक गेम्स में भी ब्रह्मा कुमारी की स्पोर्ट्स विंग को इनवाइट किया था, तो ये वहां के कुछ मेमोरीज हैं। फिर सिंगापुर यूथ ओलंपिक गेम्स में शशि दीदी और हमें इनवाइट किया था, ये फर्स्ट टाइम यूथ ओलंपिक गेम्स हुए और बहुत ही अच्छा आयोजन किया गया। यहाँ अनेक ओलंपियन से हम मिले, और बीच बीच में जब भी उनको ऐसा कोई स्ट्रेस होता था मैच से पहले, तो हम उनको कुछ टिप्स देके मेडिटेशन की ट्रेनिंग देके कुछ को हमने सेंटर पे बुलाया, और सेंटर पे बाबा के रूम में बैठ करके, तो ऐसे अलग अलग तरीके से अपने आप को चार्ज करके, इसमें भी बहुत अच्छा हमारा योगदान रहा ब्रह्मा कुमारीज का। ये आप देख रहे हैं यूनाइटेड नेशंस में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी जिसमें 150 कंट्रीज के 350 डेलीगेट्स थे, तो इसमें टॉपिक था हाउ टू ब्रिंग पीस इन द वर्ल्ड थ्रू स्पोर्ट्स। तो ये इंडियन ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट है मिस्टर जैक श्रॉग, उनके साथ आप देख रहे हैं। तो इन्होंने भी हमारे कार्य को बहुत सराहा। फिर रशिया में भी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी सोची में, तो वहां के स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, डिप्टी स्पोर्ट्स मिनिस्टर, सो दे ऑल्सो एप्रिशिएटेड। इसके अलावा भी हम कोशिश करते हैं इंडिया में जहां पे भी ये स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट होते हैं, नेशनल स्पोर्ट्स डे, पीस एंड स्पोर्ट्स डे, इंटरनेशनल योगा डे, ओलंपिक डे, वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे, तो इस पे भी हम अपने जो ब्रांचेज हैं वहां पर ईमेल भेजते हैं यहां से कि कोई कोई प्रोग्राम करें, खिलाड़ियों को सम्मानित करें, कोई ऐसा वॉक या कोई मिनी मैराथन, ऐसी इवेंट के द्वारा हम स्पोर्ट्स कॉन्शियसनेस, हाउ टू क्रिएट स्पोर्ट्स कॉन्शियसनेस इन अवर कंट्री इन अवर स्टेट्स, तो वो प्रोजेक्ट भी हमारा साथ के साथ पूरे साल चलता रहता है और अनेक सालों से ये हमारा कार्य चल रहा है। तो हमारी कुछ फेसबुक में पेजेस भी बने हुए हैं स्पोर्ट्स विंग ब्रह्मा कुमारीज, माइंड एंड ब्रेन बेसिक स्टडीज, तो इसके द्वारा भी आप इनकी जानकारी ले सकते हैं। तो लास्ट में मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाना चाहूंगा। दो क्लिप हैं, एक तो पीवी सिंधु की है, एक हमारे दादी जानकी जी की, कुछ ब्लेसिंग्स आई हैं हम सबके लिए। तो पहले मैं चाहूंगा देवराज भाई आप एक तो वो जो कन्या है जो मोटर रेसिंग में, उनका दिखाएं कि कैसे वो एक इस गेम में हमारे इंडिया से कम ही लोग जाते हैं फॉर्मूला रेसेस में, एंड वी आर प्राउड दैट हमारे बीच में वो कन्या कहाँ पे हैं जो मोटर रेसिंग में है, शी इज देयर। तो इसका 3 मिनट का क्लिप है, तो आप देखेंगे वेरी इंस्पायरिंग। मुझे आज ही इन्होंने दिखाया था अपना इतनी उम्र में और इतना एडवेंचर स्पोर्ट्स को सिलेक्ट करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वेरी गुड. ये देखो ट्रैक चेन्नई में और साउथ इंडिया में काफी रेसिंग ट्रैक्स हैं. नोएडा के अंदर भी अभी आपने देखा है कि काफी अच्छा इस रेस को प्रमोट किया जा रहा है. तो ये अलग अलग मेमोरी रेस जीतने के बाद मेडल प्राप्त करते हुए ये ट्रैक का है. ये छोटी सी इस टाइप की गाड़ियां होती हैं रेस कार. Request that sister, please come beside us for 1 minute. By the time your clip is there, just from there you come. From there. And मैंने खुद भी हम लोग फॉर्मूला में एक बार गए थे. इधर इधर से आइए, पीछे से आ जाइए. Please come this side. तो बहुत ही डेयरिंग ये है. एक सिस्टर मेघलानी फ्रॉम दिल्ली, उसने भी हिमालयन कार रैली में पार्टिसिपेट किया था एंड सी डिड वेरी वेल. एंड मेडिटेशन भी वो करते हैं. तो 2 मिनट ये भी बताते जाएंगे, वीडियो क्लिप भी चलता जाएगा. जस्ट शेयर योर नेम एंड इंट्रोडक्शन.
ओम शांति. मेरा नाम मीरा एडा है एंड मैं नौ साल की थी तब से मैंने रेसिंग स्टार्ट किया. एंड अभी मुझे 7 साल हो गए हैं रेसिंग में. मैं अभी 16 साल की हूँ. एंड मोटर स्पोर्ट्स मेल डोमिनेटेड स्पोर्ट्स होता है. सो इंडिया में ज़्यादा लड़कियाँ दिखती नहीं है एंड इवन ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में ज़्यादा लड़कियाँ नहीं होती. सो ये 7 साल में बहुत डिफिकल्ट रहा है मेरे लिए. एंड दिस इज वन ऑफ द रेस जहाँ पे मैं लास्ट स्टार्ट किया था मैंने. एंड मैंने रेस विन किया. सिर्फ 3 लैप में मैं फर्स्ट हो गई थी. एंड उसके बाद मैं खुद यू नो रेस के पहले जब मेरा रेस स्टार्ट होता है उसके 10 मिनट पहले मैं एक जगह पे जाके शांति से अकेले बैठती हूँ और मेडिटेशन करती हूँ जितना हो सकता है उतना. सो दैट जब मैं रेस में होती हूँ तब बहुत टेंशन होता है. कभी कभार एक्सीडेंट्स होते हैं तो बहुत टेंशन होता है. वो हमें शांत रहने में मुझे हेल्प करता है. एंड देन मुझे जो अगर डिसीजन लेना होता है वहाँ पे बहुत जल्दी डिसीजंस लेने होते हैं ओवरटेकिंग में, तो वो भी बहुत हेल्प करता है कि हम ज़्यादा हाइपर ना हो जाए. ज़्यादा टेंशन लेंगे तो ज़्यादा मिस्टेक्स होती है. तो मेडिटेशन मुझे अभी भी बहुत मदद करता है और मैं रोज़ दिन में अगर मैं घर पर भी होती हूँ तो भी मैं रोज़ मेडिटेशन करती हूँ.
Thank you so much, sister. We have one more clip of PV Sandhu. So, जब ओलंपिक में जाने से पहले शांति सरोवर में कुलदीप दीदी ने, वसंता बहन ने उनको काफी प्रोत्साहित किया. वहाँ गोपीचंद पुलेला से भी हमारा मिलना हुआ जब स्पोर्ट्स विलेज में गए. तो उन्होंने पूरा क्रेडिट ये बताया कि कैसे मैंने अपने माइंड को फोकस किया. तो ओवर टू PV Sandhu.
It's a great privilege to be here today and I'm very thankful to you all because I feel because of your support and blessings I'm here today. And especially, yes, I would like to say one thing that thank you, sisters. I would like to thank everybody because they've really helped me and blessed me, because before going to the Olympics, I've come here to the Brahma Kumaris 2-3 times and they've given me like sessions, but then it was not too long, but just a meditation session, and it really helped me. And in the matches also I could feel the difference. I think it was a very great feeling. And definitely, sister, I would love to come. If there's no time also, I would make time and definitely come and do it. So, and I'm very thankful because it was a dream for me, and the dream has come true. So I'm very happy. Thank you.
Now we have the last message. Our chief of Brahma Kumaris, Dadi Janki ji, who is कल थोड़ा सा गलती से दीदी ने 91 ईयर बताया उनका एज, but she is more than 101 year. She has crossed 100 year, and now we are going to listen to her blessings for all of us in the video clip.
Om Shanti. सुना है ज्ञान सरोवर में इस पूर्व विंग के शुरू हो रही है. अच्छा, सभी विंग्स का मैंने सुना प्रोग्राम जो है ना ज्ञान सरोवर में होगा. अभी मैं तो चाहती हूँ उड़ करके ऊपर आ जाऊँ. दूर ठीक है, ड्रामा बाबा के ड्रामा को ऐसा साथी बनाओ जो माइंड और बॉडी की एनर्जी से भरी हो. मैं कहती हूँ ना स्वास्थ्य संक्रमण सफला हो, वेस्ट ख्याल ना आवे, तो फोकस रहे अच्छी तरह से. स्पोर्ट्स में क्या चाहिए, अटेंशन, टेंशन फ्री. मुझे एक बारी की बाबा की बाजार दादी है, बाबा ने कहा था टेंशन के आगे तो ए लिखो ना, बस अटेंशन से कार्य जरूर सफल होता है. तो आप सब मिल करके मैंने अभी आज कर रहे थोड़े समय से शशि बहन आपको देखा है, हर बात में अच्छी है, मजबूत है, क्योंकि स्पोर्ट्स मजबूत रहता है. परंतु स्पोर्ट्स करने के लिए कराने के लिए हिम्मत चाहिए, उमंग उत्साह चाहिए. उमंग उत्साह है न तो ऐसे कर रहे है जैसे बच्चा कर रहे है. बड़े बूढ़ा होगा, 70 साल की एज होगी, 80 साल की, परंतु तो खेलने की आदत जो पड़ी हुई है न तो अच्छी तरह से अटेंशन से ऐसी खेलता है. मैं भी साथी होकर के देख रही हूँ. सच बाबा ने मुझे दो बातें अच्छी सिखाई है, बाबा मेरा साथी है या ज्ञान कहता है साखी हो जाओ. साखी होकर बस एनर्जी जो वेस्ट न जावे, माइंड बॉडी दोनों हेल्दी वेल्दी हैप्पी, हेल्दी वेल्दी हैप्पी. वेल्दी कोई पैसे की बात नहीं है, सेलिब्रिटी की बात है. स्पोर्ट्स में ये सब मेरी थोड़ी सी जो आप सबके लिए सिद्ध भावना है ना, मैं बता रही हूँ. मैं सच्चा पूछो तो मैं तो इतनी स्पोर्ट्स नहीं कर सकती हूँ, पर आपकी देख तो सकती हूँ ना. बड़ा अच्छी तरह से प्यार से मिलकर के करते हैं. तो जो भी हमारे वंडर है ज्ञानी तू आत्मा योग युको जो है ना, वो भी स्पोर्ट्स में चले गए. क्योंकि शरीर ये जो है ना, ये संगम युग में शरीर से सेवा लेना, ऐसी सेवा कराना जो सभी देख करके वंडर अटेंशन है, सिर्फ बात और कोई बात नहीं है. कोई हालत में भी कुछ भी हो जाए भाई, मैं नहीं कर सकती हूँ ऐसा शब्द न कभी न मुख पर न नैनो में आए. बाबा वैसा है, बाबा सिखा रहा है सब बात में. मैंने देखा है अटेंशन रखने से वास हो ही पर हो जाएंगे. गहरी से समझा मेरी बात. थैंक यू. ओम शांति.
In the continuation of the program, now we are going to have a candle lighting. So I will request a guest to, I will announce few names. So they will come for the candle lighting ceremony. So please put the candle lighting stands.
Shubh sankalpo ke deep jalaye apne apne man mein. शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में. जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में. शुभ संकल्पों के दीप दीप जलाए
सिंह में पधारे। सभी मेहमानों से भी निवेदन कि कृपया इस दीप प्रज्वलन की श्रृंखला में आप हम सबके साथ तालियां बजा करके शरीक होंगे। बहुत ही सुंदर ये उत्सव आज का ये इनॉग्रेशन सेशन जो हम सबके बीच आज इस ज्ञान सरोवर के पावन प्रांगण में चल रहा है।
सरल निराला दिव्यता की बन जाए मूरत मंदिर से इस तन में जग उजियारा होगा प्रेम से।
सभी मेहमानों से निवेदन कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करता हूं हम सबके बीच मिस्टर दिनेश कुमार शुक्ला डिविजनल सिक्योरिटी कमिश्नर आरपीएफ बीकानेर। आप बेसिकली यूपी लखनऊ से हैं, आपने बीए एलएलबी किया है और डिफरेंट कैपेसिटी में आपने लखनऊ दिल्ली ओडिशा में अपनी सेवाएं दी हैं और अभी आपकी मैन्युटरी सर्विसेज को देखते हुए इंडियन पुलिस अवार्ड आपको राष्ट्रपति जी के द्वारा 2013 में मिला है। आप हम सबके बीच पधारे हैं, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। आपसे निवेदन आप स्पोर्ट्स विंग के इस इनॉग्रेशन सेशन में अपनी ग्रीटिंग्स देंगे। डॉक्टर डी के शुक्ला जी।
ओम शांति। मंचासीन हमारे सभी महानुभावगण, कार्यक्रम में उपस्थित भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, यह मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज मैं इस नेशनल स्पोर्ट्स कॉन्फ्रेंस के ओपनिंग सेरेमनी में उपस्थित हो पाया हूं। मूल रूप से मैं बताऊं तो हमारे महानिदेशक माननीय श्री एस के भगत जो रेलवे बोर्ड में है, ऑल इंडिया को गवर्न करते हैं, उनको आमंत्रित किया गया था। किन्हीं विशेष परिस्थितियों में उनको डीजीज कॉन्फ्रेंस में जाना पड़ गया तो इसलिए मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ है और मैं अपने को बहुत भाग्यशाली समझता हूं कि इस ज्ञान सरोवर में आकर के मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। यह तीन दिन का जो नेशनल स्पोर्ट्स कॉन्फ्रेंस है, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, सभी के लिए बहुत ही आवश्यक है। स्पोर्ट्स में जो विधाएं हैं, बॉडी का है, कंसंट्रेशन है, फिजिकल फिटनेस है, उसके साथ साथ अगर आध्यात्मिक या कंसंट्रेशन का पुट जोड़ दिया जाता है तो उसका कोई मुकाबला नहीं हो सकता है। हमारी देश की आबादी 125 करोड़ है लेकिन हम एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, ओलंपिक्स में उतना परफॉर्मेंस नहीं कर सकते, कर पा रहे हैं जितना कि हमारी आबादी है। यह विधा जैसा कि हम भाई जगवीर जी से बात हो रही थी, इन्होंने कोचिंग किया बताया और इसका अनुपालन करने से री इनर्जाइज होकर के बहुत से ज्यादा रिजल्ट हम अचीव कर सकते हैं। अभी उदाहरण चल रहा था, मैं बताना चाहूंगा कि अरुणिमा सिन्हा जिनका पैर कट गया था ट्रेन एक्सीडेंट में, उन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। ज्वलंत उदाहरण हमारे युवराज सिंह जी हैं, क्रिकेटर, जिन्होंने कैंसर से लड़ाई जीत करके और अभी भी क्रिकेट के साथ पूरे जुड़े हुए हैं। और भी बहुत सारे उदाहरण भरे पड़े हैं। अगर हम उसमें इस विधा को जोड़ देते हैं तो हमारा हाई परफॉर्मेंस कोई रोक नहीं सकता। जैसा कि है, चंचला ही मना कृष्णा प्रमाद यो बल दृढ़। मन चंचल है, उसको एकाग्र करना बहुत ही आवश्यक है। अगर उसको एकाग्र चित्त होकर के और पुनः पूरे मनोयोग से कोई कर्म किया जाए तो ऐसी कोई चीज नहीं है कि उसमें सफलता नहीं प्राप्त हो सकती है। तो हम आशा करते हैं कि ये 3 दिन का जो हमारा कॉन्फ्रेंस है बहुत ही सफल होगा। इस पे न केवल स्पोर्ट्स पर्सन बाकी हमारे जितने भी भाई बहन यहां उपस्थित हैं वो भी लाभान्वित होंगे। और इसको मात्र यही नहीं समझ करके कि यहां से आप जो इनपुट और ज्ञानार्जन करते हैं उसका अगर आप पब्लिक फील्ड में जीवन में अगर उसका निरंतर उपयोग करते रहेंगे तो ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि आपको किसी प्रकार की सफलता प्राप्त होने पर रोक सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि ये कॉन्फ्रेंस बहुत ही सफल रहेगा और आप लोग यहां से ग्रहण करके जाएंगे। ओम शांति।
थैंक यू वेरी मच शुक्ला जी। मैं निवेदन करूंगा हम सबके बीच भ्राता ईश्वर सिंह दहिया जी जो कि रेसलिंग कोच साक्षी मलिक रोहतक से पधारे हैं, जिन्होंने अभी रियो ओलंपिक मेडलिस्ट 2016 में भारत का नाम रोशन किया। आप हम सबके बीच पधारे, अपनी ग्रीटिंग्स हम सबको देंगे ईश्वर सिंह दहिया जी। सभी तालियां बजाकर एक बार वेलकम करेंगे।
ओम शांति। मंच पर बैठे महानुभाव, उपस्थित दोस्तों, प्यारे बच्चों, मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरा सचिन तेंदुलकर से मैंने एक बात बड़ी उनकी अच्छी लगी थी कि मैं नहीं बोलता, मेरा बैट बोलता है। तो मैं यहां अपने कुछ अनुभव लाइफ के एक दो आपसे शेयर जरूर करूंगा क्योंकि यहां देश पूरे इलाके देश से आए हुए लोग और विदेश से भी आए हुए, जैसे नेपाल से भी आए हुए हैं कुछ लोग, तो सभी साथियों के बीच आकर और यहां आकर मैं अपने आप को बहुत धन्य समझता हूं क्योंकि यहां मैं 2010 में यहां एक बार आया था और यहां से मुझे बहुत प्रेरणा मिली। एक मेडिटेशन के जो यहां से प्रेरणा मिली, अब मैं दोबारा फिर इसी कारण यहां से आया हूं और इस प्रेरणा के कारण साक्षी मलिक का मेडल भी, शायद मैं कहता हूं कि इसी से आया हो क्योंकि उनकी जब बाउट चल रही थी रात के 12 बजे रशियन से वो हार गई थी तो मैंने फोन मिलाया और उसको यही कहा कि बेटा जो हुआ वो भूल जाओ और आप यहां सबसे अच्छी थी, जीतना था गोल्ड लेकिन उसको भूल जाओ, अभी मतलब आपने आपके लेवल का यहां कोई भी खिलाड़ी नहीं, आपने अगला मैच जरूर जीतना है। और उन्होंने जीत कर दिखाया, उसको काफी मोटिवेट किया और देश पूरी तरह से निराश हो चुका था कि हमारे देश में पता नहीं इतने 130 करोड़ की पॉपुलेशन, मेडल एक नहीं पूरी देश की निगाहें वहां लगी हुई थी, तो वो हमारी बिटिया ने पूरी की और बाद में पीवी सिंधु जिन्होंने देश का बहुत ही नाम गौरवान्वित किया। मुझे बड़ी खुशी हुई कि लड़कियों ने हमारी देश की आन बान शान को रखा, क्योंकि मुझे एक बात हमेशा कचोटती थी। मैंने रोहतक में जब कुश्ती को, लड़कियों की विशेषकर कुश्ती को जब शुरू किया, सभी लोग मेरे को ये कहने लगे कि यार ईश्वर दैया पागल हो चुका है, जब इसके पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लड़के ऑलरेडी तैयार हैं तो ये लड़कियों क्यों शुरू कर रहा। लेकिन मेरा बचपन से लेकर अब तक मैं क्रांतिकारियों की जैसे शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, इनकी बहुत, महात्मा गांधी, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद को बहुत पढ़ा मैंने। और देखो कवि की कल्पना देखो कितनी अच्छी, आपने शहीद आजम भगत सिंह का जो फोटो देखा होगा कई बार, एक चारपाई पर बैठा हुआ है जेल में, कभी चारपाई तो होती नहीं लेकिन वो एक कवि की कल्पना है बर्फ पर बर्फ की शैलियों पर बैठा हुआ होता है, कोड़े लगाए हुए होते हैं, खून निकला हुआ होता है, उसके नमक छिड़क दिया जाता है, लेकिन उसे एहसास ही नहीं होता कि आप बर्फ की शैलियों पर बैठे हैं या चारपाई पर बैठे हैं या गद्दे पर बैठे हैं या जमीन पर बैठे हैं, क्योंकि ये कारण एक मेडिटेशन का ही है। वो इतना एकाग्रचित होते थे, वो देश के प्रति सोच थी उन लोगों की कि हम अपने देश के लिए कुछ करेंगे। तो मुझे भी अपने देश के प्रति एक लगाव है, हालांकि मेरे दोनों बेटे ऑस्ट्रेलिया थे, एक तो वहीं सेटल हो रहा है, वो कहता पापा यहां आ जाओ अब रिटायरमेंट के बाद, अब तो यहां आ जाओ मेरे पास। मां भाई जिएंगे तो देश के लिए, मरेंगे तो देश के लिए। अब भी मैंने अपनी एकेडमी रोहतक में खोली हुई है, 3 साल रिटायरमेंट हो चुके, लेकिन मैंने उनको बोल रखा है कि भाई मेरी रिटायरमेंट इस मैट से होगी और मेरी मृत्यु के साथ ही होगी। देश के लिए थोड़ा बहुत भी कर पाए तो हम अपने आप को खुश नसीब समझेंगे। और क्योंकि मेरे दिमाग में खिलाड़ियों के प्रति है ना शुरू से ही सोच थी, मेरा HAU हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में लेक्चरर के लिए सिलेक्शन हुआ, मैं वहां प्रोफेसर भी होता, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, प्रिंसिपल, डीन, डायरेक्टर, सभी, इवन वाइस चांसलर भी किसी यूनिवर्सिटी का लगा देते, लेकिन मैंने सिर्फ एक रेसलिंग को ही चुना और इसके लिए ही अपने आप को समर्पित किया। यही कोशिश और लास्ट तक करता रहूंगा, कोशिश यही है कि मतलब इनके लिए जिएंगे, इनके लिए मरेंगे, देश के लिए। एक मैंने कई बार बड़ी बात कचोटती है कि खिलाड़ी बेचारे बहुत हालत बहुत खस्ता है और बड़ी गरीबी से निकल के जो गरीब खिलाड़ी बच्चे होते हैं वही ज्यादातर भाग लेते हैं, क्योंकि मैंने देश विदेश तकरीबन देशों का दौरा कर चुका, मैं घूमकर देखा है, प्रैक्टिकली अपने अनुभव में आपको बता रहा हूं। अब हम कई बार कह देते हैं 130 करोड़ की जनसंख्या, मेडल एक नहीं, लेकिन आप सुविधाओं को देखेंगे तो हम उनके 5% भी नहीं खड़े होते। सोना बाथ, स्टीम बाथ, स्पा, स्विमिंग पूल, साथ साथ जिम, मैंने उनकी फैसिलिटीज देखी तो मतलब यहां पे हमारे नेशनल कैंप लगते हैं उनमें भी सोना बाथ में यदि आप घुसोगे तो ऐसे लगेगा जैसे काल कोठड़ी में घुस गए, तो मेडल की उपेक्षा कैसी होगी। हमारे खिलाड़ी, हमारे देश का व्यक्ति जितना मेहनती है इतना दुनिया में किसी भी देश का व्यक्ति नहीं है। हमारे सुशील कुमार, योगेश्वर, मैंने नेशनल कैंप भी लिए हैं, मैंने उनको देखा है जो ओलंपिक के मेडल लेते हैं उनसे 2.5 और 3 गुना ज्यादा मेहनत करके ओलंपिक का मेडल लेना पड़ता है, क्योंकि सुविधाओं की कमी के कारण। अब हम देख लेते हैं यार मैट है, अच्छा हॉल है, एसी लगा हुआ है, लेकिन आप सबको पता है कि मैट होगा, एक मैट पर जहां 10 बच्चे करने चाहिए, एक कोच होना चाहिए, वहां 100-200 बच्चे कर रहे हैं। एसी खराब हो गया तो खराब ही है, एक महीना हो जाए, 2 महीना हो जाए, कोई संभालने वाला नहीं है, मेंटेनेंस नहीं है, बहुत ही कम जगह पर है। हम जब कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं या किसी भी चीज को हम तैयार करते हैं, मेंटेनेंस के लिए पैसा निकालते ही नहीं, तो इन परिस्थितियों में भी हम मेडल लाते हैं, तो मैं तो उन बच्चों पर नाज करता हूं। रही खिलाड़ियों की बात, बेचारे गरीब परिवार से आते हैं, एक समय होता था, आप किसी भी काल को उठाकर देखो, रामायण को उठाओ, महाभारत को उठाओ, गुप्त काल, मौर्य काल, मुगल काल, इवन 1857 की क्रांति तक आ जाओ, रामायण में भगवान श्री कृष्ण होते थे, ये रामायण में राम लक्ष्मण सब रावण कितने विद्वान और धनुर्धर होते थे, कोई गदाधारी होता था। और इवन 1857 तक आओ, हमारी झांसी की रानी अच्छी घुड़सवार और तलवारबाज थी। लेकिन आज खिलाड़ियों में क्या दिशा है, घुड़सवारी के लिए यदि एक आम बच्चा करना चाहेगा उसे घुड़सवारी के लिए पैसे नहीं है। घुड़सवारी भी अमीर आदमियों का ही शौक है। तलवारबाजी ये भी एक अमीर आदमियों का ही, अब पिस्टल है जैसे, हमारे पास सुविधाएं हों तो हमारे बच्चे इतने मेहनती हैं वो इस देश को मेडलों से आंट दें, मतलब ढक दें, इतने पूरे देश के मेडल, हमारे देश में जितने मेडल आए इतने तो आधा पूरा विश्व ले। हमारे देश में हर चीज है, लेकिन एक व्यवस्था के कारण, इस व्यवस्था को बदलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मैं ज्यादा न कहते हुए, मतलब कुछ ज्यादा ही बोल गया और कुछ शब्द गलत निकल गए हों तो उसके लिए मैं सॉरी भी कहता हूं। ओम शांति।
भैया साहब अपने मन की भावनाओं को हम सबके सामने प्रस्तुत कर रहे थे। रियलिटी यही है, शक्तियां बहुत हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेयर्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बीच में से गुजरना पड़ता है और एक कोच को पूरी कुर्बानी देनी होती है, दिन रात एक करना पड़ता है, तब जाकर कहीं विश्व स्तर के ओलंपिक में मेडल आता है। और आपके साक्षी मलिक ने भारत के लिए मेडल लिया, ये बहुत गौरव की बात है। आपका बहुत बहुत यहां आने पर शुभकामनाएं। आपने अपनी भावनाओं को हम सबके सामने प्रस्तुत किया। हमारे बीच में भ्राता वीरेश यामा जी जो कि इंडियन स्केटिंग टीम के कोच सिकंदराबाद से पधारे हैं। आप खुद 1974, 75, 76 में स्टेट चैंपियन रहे और आपके द्वारा 1991 में मिस श्वेता एंड मिस्टर रवि ने एशियन ब्रॉन्ज मेडल जीता और आपके सपुत्र मिस्टर अनूप कुमार यामा जो कि उन्होंने 100 नेशनल और अनेक इंटरनेशनल मेडल लिए, जिनको 2015 में अर्जुन अवार्ड मिला है। आप अपने सपुत्र के भी कोच हैं और इंडियन स्केटिंग टीम के भी कोच हैं। आज हम सबके बीच पधारे, आपसे रिक्वेस्ट, अपनी ग्रीटिंग्स हम सबके बीच रखेंगे। यामा जी
वेरी गुड आफ्टरनून टू द ऑर्गेनाइजर्स गेस्ट एंड द पार्टिसिपेंट्स। First, I would like to thank Mr. Ravi Madan for introducing me to this great spiritual organization, Brahma Kumaris. Om Shanti. When Ravi had discussed with me about the topic being discussed here in this conference, Mind Supplement for High Performance, I being a coach and a trainee in roller skating from past 25 years, was very much eager to be in this conference. As we are discussing about the sports person's hard work, discipline, concentration while performing his or her event in the competition, I would like to share my experience with Anup Kumar Yama, Indian roller skater from Hyderabad. Anup had started winning national medals from the age of 5 years. Now he has about 100 plus golds at the national level. In the 50 years of roller skating history, no Indian had won a world championship. In spite of Anup winning 12 golds, 8 silvers, 9 bronzes at the Asian level championships. Ten years back, when Anup first participated in the world championship, secured 17th position, which was a great achievement in those days. because no Indian would ever come into the first 30 participants level. Later on, he upgraded himself to the fourth place in the next 7 years. But here his tough journey started. He was really frustrated in the next 3 years as he was continuously in fourth place for next 3 years. He could not come into the first three positions, that is gold, silver and bronze. In spite of we sending him to the best of the coaches in Italy and France. Then I said, Anup, I, your father and coach, nor the international coaches can place you in the first three positions. It is you and only you can secure that place. Please concentrate and then in the 2030, the world championship was held in Chinese Taipei. An artistic event as as a skater is judged in two events. One is technical merit, that is the compulsory events, and the second is artistic event where you are judged for your jumps, spins, choreography, footwork, dance and grace. These both scores put together is your result. On the first day of the event, his technical merit event, he was played again at the fourth position. And while practicing for the artistic event for the next day performance, he met with an accident, a fall where he fractured both his ribs and was hospitalized and declared unfit. That night our Indian team doctor, Kiran Desai from Ahmedabad, had talked to Anup and consulted with the local doctors and gave him painkillers and dressed him with heavy bandage and took him to the event on the next day. After performing for his 4-minute event, he collapsed on the floor, giving his best performance. See, again, and with the grace of God, the Almighty, he had created history. First time in the history of 50 years of roller skating, India had awarded gold medal. This is what, dear friends, winning spirit is in the mind, immaterial of what difficulties you have come across. Please be calm and concentrate on your event. Later on, he won 3 world championships and most prestigious award, Arjun Award, which he was longing from his childhood. I have especially come here to learn more about mind supplements and high performance, so that I could learn something from this great organization and help our Indian skaters to perform best in Asian and the world championships. Thank you once again. Om Shanti.
Thank you, Viresh Yamaji. Really, mein aapne भारत में अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्केटिंग चैंपियनशिप को ऑर्गेनाइज किया है और बच्चे वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडलिस्ट बनाए हैं. आज हम सबके बीच पधारे. मैं निवेदन करता हूं हम सबके बीच कैप्टन त्रिभुवन जायसवाल, जो कि इंडियन नेवी से पधारे हैं, जो कि सर्विसिंग ऑफिसर पिछले 30 वर्षों से आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं. आप डायरेक्टर ट्रेनिंग एचिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया and qualified national race officer and vice president of EI, Yachting Association of India, जो कि sailing and motor boating का association है. आप हम सबके बीच पधारे. मैं request करूंगा अपनी greetings हम सबके बीच रखेंगे Captain त्रिभुवन जायसवाल जी. एक बार तालियां बजाएंगे Captain साहब के लिए.
Om Shanti. Eminent personalities sitting on the stage, players, coaches, mentors, parents, aap sabhi ko मेरा वंदन। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा श्री भाई बीके जी का, जगबीर जी का, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है यहां आने के लिए, इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए। बीकेज के साथ मेरा एसोसिएशन करीब 3 साल पुराना है। एक बार अपने कलीग के साथ मुंबई में कुलाबा सेंटर में वो मुझे लेकर गए थे। मुझे कुछ अच्छा लगा उसके बारे में जो एक सेशन मैंने देखा। उसके बबाद राजयोगा का मैंने 7 दिन का शिविर अटेंड किया। बींग फ्रॉम डिफेंस यू नो वी डोंट टेक थिंग्स एज दे कम। हमको साइंटिफिकली या उसका क्या एडवांटेज है और क्यों है कैसे है, ये क्वेश्चंस ज्यादा रहते हैं हमेशा। लेकिन धीरे धीरे वो 7 दिन में मुझे थोड़ा सा कन्विंस हुआ कि यस इट इज मेकिंग अ डिफरेंस। बिकॉज आफ्टर ऑल हमारा जॉब है टू बी ऑलवेज प्रेजेंट विद माइंड मेंटली। इट इज नॉट फिजिकल, इट इज द मेंटल प्रिपेयरनेस विच इज रिक्वायर्ड इन डिफेंस। उसके बाद फिर मुझे मौका मिला पिछले साल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का, यहां पे एक कॉन्फ्रेंस होती है 4 दिन की, वो मुझे अटेंड करने का मौका मिला। दैट कन्विंस्ड मी कि यस देर इज समथिंग अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन, अबाउट द वे दे टेल यू हाउ टू गो अबाउट इट, दैट कैन मेक अ डिफरेंस टू एनी पर्सन। स्पेशली वो आदमी जिसको अपने आप पे भरोसा नहीं है, या वो जो बंदा इस दुनिया में या इस जगह पर हिम्मत हारने चुका है या उस कगार पे पहुंच गया है। सो आई फील दैट दिस इज अ वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन विच हैज गॉट इट्स सिस्टम्स इन प्लेस। हम लोग हर जगह सुनते हैं कि मेडिटेशन है, योगा है, लेकिन जो किस तरीके से उसको, किस प्रोसीजर से, सॉरी मैं प्रोसीजर्स और एसओपीज की बात करूंगा बिकॉज वी आर ओनली अबाउट प्रोसीजर्स, बिकॉज इन पीस यू गो अबाउट योर प्रोसीजर्स again and again and again, so that when it is required, when there is no time, you don't start thinking, you don't start looking at the books ki procedure kya hai, it just comes automatically. So wo jo system hai, procedure ko aapke andar ingrain karne ka, apne aap ko confidence dene ka, I think, I feel this organization has really mastered. And aapne dekha ye examples, itne sare example diye unhone jo presently na sirf baki fields mein but sports mein bhi kaam kar raha hai. Anyways, talking about this sports conference, मन का सशक्तिकरण, yes, हम सभी इसको बिलीव करते हैं। All of you are associated with sports, nobody will disagree कि physical fitness और skills के अलावा mental balance की हम सभी बात करते हैं। उस mental balance को कैसे लेकर आएंगे और किस तरीके से हमको लाना है, that is what this institution, I feel, will be a great help if we follow. And मैं look forward करता हूं कि ये जो अगले 3 दिन हम यहां बिताएंगे उसमें डेफिनेटली हमें नए नए टूल्स के बारे में इंट्रोडक्शन मिलेगा। एक्चुअली मैं अपने लाइफ से एक एग्जांपल देना चाहता हूं। मैं मुंबई में बेस्ड हूं। पिछले साल के जो नेशनल्स की तैयारी चल रही थी सेलिंग चैंपियनशिप्स की, तो हमारी नेवी टीम के कुछ जो टीम्स तैयारियां कर रही थी उसमें जो टॉप की टीम, हमारी जो टॉप की टीम थी उसके दोनों प्लेयर्स, अब ये तो जिंदगी है कुछ ना कुछ लगा रहता है, तो अनफॉर्चुनेटली और कोइंसिडेंटली बोथ द प्लेयर्स हैड प्रॉब्लम्स विद देयर वाइव्स। आई एम सॉरी, मेरे को लेडीज के अगेंस्ट में कुछ नहीं है, लेकिन इट जस्ट सो हैपेंड कि दे वर हैविंग सम प्रॉब्लम्स एंड देयर कॉन्सेंट्रेशन वॉज डिग्रेडिंग डे बाय डे, दे वर नॉट एबल टू परफॉर्म ऑन द फील्ड एंड दे वर आर होप्स। तब मुझे यहां पर एक बार इनफैक्ट जगबीर सिंह से मैंने बातचीत भी हुई थी, तो तब मुझे ध्यान आया कि इनको कुछ ना कुछ करके मेंटली इनको वापस लाना है। तो एक छोटा सा उपाय मैंने उनको कहा कि भाई जब आप जाते हो सेलिंग से पहले, अपना कंपटीशन से पहले, और कुछ मत करो, 5 मिनट सिर्फ बैठकर कुछ मत सोचो और मेडिटेशन करो। अब मेडिटेशन आपको समझ में नहीं आता, कोई बात नहीं, जस्ट चुपचाप बैठो और अपने आप सोचो कि मुझे आगे जाके उधर क्या करना है और क्या नहीं करना है। एंड यू वोंट बिलीव दिस, नेशनल्स में दे गॉट गोल्ड मेडल। दैट इज further you know strengthened my belief that yes, mind can be changed and it has to be worked upon. ye ek din aakar meditation ke bare mein sunkar ya 2-4 din meditation karne se iska effect shayad itna zyada clearly samajh mein na aaye, kyunki it has to be formed as a way of life. humne subah bhi suna tha ki hamare value system, aur un sab ko main repeat nahi karna chahunga, but द जिस्ट ऑफ ऑल इज कि हमारी जिंदगी में इसको जिंदगी का हिस्सा बनाना है। बिकॉज तभी हम उस बात को लेकर आगे बढ़ सकेंगे, इसका एडवांटेज ले सकेंगे। यहां पर बैठे कितने कोचेज हैं, कितने पेरेंट्स हैं, इनफैक्ट कितने खिलाड़ी हैं जो हमेशा सोचते हैं कि काश मैंने वहां पर वो दैट एक्स्ट्रा दैट आई कुड हैव पुट इन, तो वो मेडल मेरा होता, मेरी जीत होती, मैं हारता नहीं। आई एम श्योर ये सभी का एक्सपीरियंस होगा कि उस पर्टिकुलर गेम में अगर मैंने थोड़ा सा और बस वो उस मोमेंट पे व्हेन आई गेव अप, हैड आई नॉट गिवन अप आई वुड हैव बीन द चैंपियन। बस वो उस मोमेंट को क्रॉस करने के लिए जो मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए, आई थिंक दिस काइंड ऑफ अ मेडिटेशन, दिस काइंड ऑफ अ ट्रीटमेंट, दी वे ऑफ लाइफ विल डेफिनेटली हेल्प दी स्पोर्ट्स पर्सन एंड इट विल गो अ लॉन्ग वे। बिकॉज आज के जमाने में जो पहले वातावरण था, एनवायरमेंट इटसेल्फ इज चेंजिंग, देयर इज लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन, देयर इज लॉट ऑफ स्ट्रेस, एंग्जाइटी है, डिस्ट्रैक्शंस हैं, कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाता है, फोकस नहीं हो पाता है आदमी का, चाहते हुए भी उसके डिस्ट्रैक्शन इतने। अभी यहां पर भी आप लोग बैठे हैं, सब सुनना चाहते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन क्या करें, कॉल आ जाता है, वो व्हाट्सएप का एक टिंग टिंग आ जाता है, तो अभी दो मिनट के लिए, एक सेकंड के लिए मैं देख लेता हूं क्या है, दैट इज अ डिस्ट्रैक्शन। सो योर फोकस इज लॉस्ट, यू वुड हैव लॉस्ट समथिंग वैल्यूएबल बीइंग स्पोकन बाय समबडी हियर। सो दैट फोकस, दैट एंग्जाइटी, इन टुडेज एनवायरमेंट वी रिक्वायर समथिंग विच गिव्स अस, ब्रिंग्स अस बैक टू द ट्रैक टू गेट आवर माइंड टू वेयर वी वॉन्ट इट टू बी, बिकॉज एट द एंड ऑफ इट, इट इज द इनर स्ट्रेंथ, वी हैव हर्ड दैट इट इज नॉट जस्ट फिजिकल, lot of physical incapabilities or the weaknesses can be overcome by your mental strength. ये हम सभी जिंदगी में face करते हैं छोटी छोटी बातों में, and that is very important. और दूसरी बात हम समझते हैं कि ये आदत है, कोई भी चीज होती है वो हमारे साथ नहीं होती है। तो अगर कोई बोल रहा है मेडिटेशन से वो बहुत अच्छा किया, सचिन तेंदुलकर ने अच्छा किया, वो तेंदुलकर अच्छा कर सकता है, अब मेरे कहा, मेरे मुझसे कहा होगा ये, मैं उस लेवल पे नहीं पहुंच सकता, दैट इज अ फैलेसी दैट वी हैव टू ओवरकम। क्योंकि एक कॉमन आदमी भी, एक मामूली इंसान, ये सुबह भी एग्जाम्पल और सभी स्पीकर्स कुछ ना कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं ये, कि मेंटल स्ट्रेंथ इंक्रीज करने से हम कहां से कहां पहुंच सकते हैं और क्या अचीव कर सकते हैं। डेफिनेटली एक और बात, मैं हमारी बीके मैडम, नहीं मैडम ने अभी एग्जाम्पल दिया था हॉस्पिटल का, उससे मुझे भी एक्चुअली हॉस्पिटल का इंसिडेंस याद आया। बीके कुलदीप जी ने बताया था कि हैदराबाद में बॉम्ब स्केयर को सुनकर सभी डॉक्टर्स भागने लगे, और जब पेशेंट्स को पता लगा तो वो भी भागने लगे, आईसीयू के पेशेंट्स। एक्चुअली रियल लाइफ में ये मैंने भी देखा है, विशाखापट्टनम में वहां पर इंडियन ऑयल का और उनका जो टैंक्स हैं, बड़ा स्टोरेज है, बहुत बड़ा स्टोरेज है, और उसके बिल्कुल पास ही नेवल रेजिडेंशियल एरिया है और हॉस्पिटल भी वहीं सामने है। एंड यू वोंट बिलीव, एक्चुअली जब वहां पे वो ब्लास्ट हो रहे थे टैंक्स में, तो यहां पर डॉक्टर्स के साथ साथ पेशेंट्स भी जंप कर करके भाग रहे थे। सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी है, एवरीबडी वॉन्ट्स टू लिव, एंड दैट इज द टाइम द ब्रेन हेल्प्स, द एनर्जी कम्स फ्रॉम इनसाइड। बट आर वी वेटिंग फॉर दैट शॉक, आर वी वेटिंग फॉर दैट शॉक ऑफ डिफीट कि उसके बाद हम काम करना शुरू करेंगे? दैट इज नॉट द केस। वी वॉन्ट टू प्रिपेयर, बिकॉज एक खिलाड़ी भी किसी और प्रोफेशन की तरह, डिफेंस की जैसे, लॉन्ग प्रिपरेशन टाइम इज देयर, यू प्रिपेयर राइट फ्रॉम बिगनिंग। जब हम बचपन से फिजिकली प्रिपेयर होने पे इतना ज्यादा स्ट्रेंथ देते हैं, तो तब से ही ये मेंटल प्रिपरेशन की जरूरत है। वी डोंट हैव टू वेट फॉर अ शॉक कि वहां पर जब मैं एक मैच हार रहा हूं उसके बाद मुझे वो सडनली स्ट्रेंथ आएगी कि नहीं अब अगला मैच जीतना है, बट तब तक शायद देर हो चुकी हो। सो डेफिनेटली आई थिंक वी नीड टू टेक दिस एज अ वे ऑफ लाइफ, आई वुड कॉल इट, एंड नॉट जस्ट अ कॉन्फ्रेंस, वहां अटेंड किया और कुछ सीखा और चले गए। इट इज नॉट जस्ट दैट, वी हैव टू गेट इट इन टू आर लाइफ, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, लाइक वी प्रैक्टिस द स्किल्स, लाइक वी प्रैक्टिस फॉर फिजिकल फिटनेस, वी हैव टू प्रैक्टिस नॉन स्टॉप एंड मे बी मोर देन फिजिकल फिटनेस, द मेंटल फिटनेस एंड मेंटल अलर्टनेस, एंड वर्क टूवर्ड्स गेटिंग दैट इनर स्ट्रेंथ दैट वी नीड एंड विच इज नेसेसरी फॉर अचीविंग एनीथिंग। इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्पोर्ट्स, about achieving anything, your own self-esteem, your self-confidence, your belief in yourself comes from your inner strength. आप खड़े होकर किसी से अगर नजरें मिला के बात करते हैं, because you are confident about yourself, you know that you can do it, and that comes from your mental strength. That strength, standing on a field, sports field, definitely, so if we are prepared that way, हमारे खिलाड़ी उतने ज्यादा मजबूत और उतने ज्यादा तैयार होंगे opponent को face करने के लिए। At the end, I think I wish all of you participants here that I'm sure, like I'm looking forward to, आप लोग भी यहां से कुछ ना कुछ सीख कर जाएंगे और कुछ ना कुछ अपने साथ लेकर जाएंगे। And I wish all the very best to the organizers. I think बहुत ही बहुत ही अच्छा उम्दा ऑर्गेनाइजेशन है इधर और बहुत अच्छी तरह से आप लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. थैंक यू. ओम शांति.
थैंक यू वेरी मच. जैसा कि आप बता रहे थे कि सिर्फ खेल ही नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में राजयोग मेडिटेशन की कितनी जरूरत है, किस तरीके से हम बॉडी एंड माइंड फिट एंड फाइन बनाएं, जीवन के हर सर्कमस्टांसेस में हर परिस्थितियों में हम इसका उपयोग करें. और अभी हम सबके बीच आज के इस सत्र में हमारे चीफ गेस्ट भ्राता आदरणीय महावीर सिंह फोगाट जी उपस्थित हैं. मैं चाहूंगा एक बार सभी इनके लिए जोरदार ताली बजाएंगे. आप द्रोणाचार्य अवार्डी हैं, सीनियर रेसलिंग कोच हैं, चरखी दादरी से पधारे हैं. आपके लिए दो लाइन मुझे याद आई हैं कि माना कहना बड़ा आसान है करना मुश्किलों की खान है, कहना बड़ा आसान है करना मुश्किलों की खान है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कहकर रह जाते हैं और आप उनमें से हैं जो करके दिखाते हैं, जो करके दिखाते हैं. रेस्पेक्टेड फोगाट जी.
शांति शांति. मंच पर विराजमान महानुभाव ब्रह्म कुमारी आश्रम से जुड़े सभी जो मेरे उम्र के और माता और बहनों और सपोर्ट से जुड़े प्यारे बच्चों, यहाँ आने के बाद में मेरे जो काफी ऊर्जा पैदा हुई है, क्योंकि जो ऊर्जा मेरे जो पहले मेरे में ऊर्जा थी, लेकिन यहाँ आने के सपोर्ट विंग में आने के बाद में जो ऊर्जा मेरे को मिली है, जो ज्ञान मिला है, तो मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ अगला 2020 ओलंपिक में शायद मैं एक नहीं दो तीन गोल्ड मेडल लेके आऊँ. ऐसी पिछला जो 16 का ओलंपिक था मेरा सौभाग्य नहीं था, बदकिस्मती था जो विनेश के चोट लेने के कारण जो गोल्ड मेडल से होगी, लेकिन उससे मैंने कुछ सबक मिला. अभी एक नहीं मैं सिर्फ 3-4 मेरी बेटी ऐसे करूँ, ऐसी तैयार करूंगा जो अगले ओलंपिक में दुनिया हरा नहीं सकी. और उसके लिए अभी से मैंने तैयारी शुरू कर रखी है, 3 टाइम मेहनत करवाता हूँ. पर रही बात, हम एक दूसरे को 2 मिनट देते हैं, कोचिज हैं वो जो सरकारों को 2 मिनट देते हैं, लेकिन हर एक सपोर्ट्स में कमी है, उसकी कमी कोई भी नहीं बताया. जो गेम चाहे क्रिकेट का हो, चाहे वॉलीबॉल का हो, चाहे हॉकी का हो, चाहे फुटबॉल का हो, चाहे कुश्ती का हो, चाहे बॉक्सिंग का हो, सिर्फ सारी कमियां प्लेयरों के अंदर हैं. नहीं तो वो मेहनत करते न अनुशासन में रहते, और हम दोष एक दूसरे में देते हैं. मैं चैलेंज करता हूं, अगर अनुशासन में रहें, जो 2020 ओलंपिक के लिए आज से तैयारी शुरू कर दो, मैं दुनिया में वो दिन दूर नहीं जो 4 साल में हिंदुस्तान मेडल की तालिका में 1 नंबर पर नहीं आए. तो अनुशासन, कड़ी मेहनत, इसके साथ सर माँ बाप का साथ भी बहुत जरूरी है, कोचिज का साथ भी बहुत जरूरी है, और सरकार का साथ भी जरूरी है. तीनों का तालमेल हो, और देखो बगैर प्रेशर कोई भी बच्चा, या पढ़ाई का मामला हो चाहे गेम का मामला हो, पिक्चर में देखा आपने हानिकार बापू, तो हरेक माँ बाप चाहता है मेरा बच्चा जो है डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन उसके पीछे जो है माँ बाप ने लगना पड़ता है, उसके कब उठता है, कब सोता है, क्या खाता है, कहाँ रहता है, तो उतनी जिम्मेवारी माँ बाप की भी है, और कोचिज की भी उतनी जिम्मेवारी बनती है. भाई आज देखो हर साल कंपटीशन होते हैं, एशिया चैंपियनशिप होती है, वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है, तो उसके अंदर पता चल जाता है अपने बच्चे का विश्व का रिजल्ट क्या है. जब एशिया चैंपियनशिप में उसका कोई पोजीशन नहीं आ रही, तो उस बच्चा ओलंपिक में क्या करेगा, तो उसके ऊपर दबाव डालना चाहिए. और जो माँ बाप ने इसके बारे में सोचना, बच्चे का रिजल्ट अच्छा क्यों नहीं आया, भाई हमें ओलंपिक 2020 में होना आया था, एशिया चैंपियनशिप हर साल होती है, इसका मेडल कोई आया नहीं, तो उस कोचिज की भी और माँ बाप की और प्लेयर की भी जिम्मेवारी बनती है. जो मैं बता रहा अगर चले ना, तो वो दिन दूर नहीं जो ओलंपिक में जो हिंदुस्तान मेडल तारीख हम सबसे पहला नंबर आएगा. रही बात जो यहाँ जो ये सपोर्ट स्विमिंग में जो यहाँ बताया जा रहा है, सिर्फ दिमाग जो ना अपना केंद्रित करके, सिर्फ मैं ये सिद्ध करना चाहता हूँ, जो ये बात ऊर्जा मेरे को और ज्यादा मिलेगी, अपना दिमाग में एक जगह केंद्रित करके. मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य है और आज भी है, यहाँ आने के बाद और ज्यादा ऊर्जा मिलेगी, ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेना. अब सोच तो लूंगा लेकिन दिमाग केंद्रित रखूंगा तो उसके हिसाब से मैंने कैसे मेहनत करवानी है, क्या क्या कमियां हैं, खाने की कमी है, मेहनत की कमी है। अगर इसी प्रकार जो अपने दिमाग ने एक जगह केंद्रित करके और कोई भी जो कोचिज लाग जाए, चाहे अपने माँ बाप पढ़ाई केंद्र बच्चों के लाग जाए या सपोर्ट लाग जाए, तो मैं मानता नहीं उसकी हार हो सकती है। लेकिन हम सब खेल के मैदान में उतरते हैं, मैं क्रिकेट का भाई इंग्लैंड की टीम बहुत तगड़ी है भाई, आप पहले उसमें को डरा देते हैं, या कुश्ती का मामला है भाई, जापान के बच्चे हैं रशिया के बहुत बढ़िया पहलवान भाई, इससे कुश्ती आती है तो उसको पहले डरा देते हैं बच्चे को, कुश्ती बता रहे हूँ आपको, उसका दिमाग तो स्थिर छोड़ा है नहीं ना भाई, तो उसको पहले उठा दिया मेडल कहाँ से आएंगे। लेकिन खुद यूं सोच है, मेरी सोच है, मैं यूं जो जो यहाँ बताई जा रही जो सपोर्ट्स एकेडमी में भाई, दिमाग में बस एक ही सोच है, मैं अगर सोचता हूँ खाना खाने के बाद में यही सोचते हैं ओलंपिक मेडल कैसे आएगा, कितनी मेहनत करवानी, कैसे मेहनत करवानी, इसका वजन भी कंट्रोल रखना है, इसका जो है बीमारी से बचाना है, तो मैं सोचता रहता हूँ अगले ओलंपिक में मेडल कैसे लूंगा। तो ये हर एक सोच लेगा तो उसका दिमाग स्थिर रहेगा, तो मैं दिन दूर नहीं जो हिंदुस्तान में मेडिटरी काम जो है फर्स्ट नहीं आए ने, जो अपने जो चाइना है उसने दो ओलंपिक लड़े नहीं थे, क्यों मेडल तालिका में उसके जो जीरो मतलब गिनती नहीं थी उसकी। आज देखो चाइना हमारे बराबर जनसंख्या है और उसके मेडल तालिका में जो तीसरा चौथा स्थान रहता है, फिर हिंदुस्तान में बढ़िया खाने का है, बढ़िया मौसम है, फल फ्रूट में जहां मिलते हैं, बढ़िया शरीर है, फिर मेडल क्यों नहीं आ रही नहीं? सिर्फ कोई भी अपनी जिम्मेवारी से भाग रहे हैं, कोई जिम्मेवारी नहीं लेता ने, लेकिन जो दूरदर्शी कड़ी मेहनत पक्का इरादा सोच की कोशिश भी माँ बाप भी और सरकार भी लगेंगी तो वो दिन दूर नहीं जो हिंदुस्तान एक नंबर नहीं आएगा। यहाँ पधारने पर बड़ा आनंद महसूस हुआ, यहाँ का वातावरण, यहाँ से मिले जो बड़ी आदमी से विचार साझा हुए, तो मैं तो कहता हूँ मैं तो कह रहा था भाई साहब और जगवीर को, मैं तो मिनिमम एक बार पांच चार दिन जरूर आऊंगा ताकि और रुझान मेरे पैदा होता है, मेरे दोस्त हो और ओलंपिक मेडल ली हूं। तो मैं ब्रह्म कुमारी आश्रम का और सभी जो संचालक हैं इनसे जुड़े हैं उनका सभी को हार्दिक दिल से धन्यवाद करता हूं, और भगवान करे आप भी जो यहां से कुछ सीख कर जाएं, जो मैंने तो कुछ सीखा है, लेकिन आपकी वो मर्जी सीखो कि नहीं सीखो। धन्यवाद।
धन्यवाद और आपको वेलकम। आप जब आए ये आपका घर है, आपका ही परिवार है फोगाट जी। जैसा कि आपने बताया कि किस तरीके से खिलाड़ी को जैसे एक्सरसाइज डाइट और रेस्ट में बैलेंस बनाना होता है, उसी के साथ साथ माँ बाप कोचिज और सरकार की भी जिम्मेवारी उतनी होती है। साथ साथ एक खिलाड़ी का जुनून भी चाहिए, हौसला भी चाहिए, जब तक हौसला नहीं होगा तब तक फैसला नहीं होगा। और कोच भी कैसे विजुलाइज करता है, जैसा आप बता रहे थे कि हमें सोचना होता है कि किस तरीके से हम इनका एग्जामिनेशन फियर खत्म करें। अपने प्लेटफॉर्म पे परफॉर्मेंस देना बड़ा आसान होता है, लेकिन जैसे ही इवेंट में चैंपियनशिप में जाते हैं तो वहां प्लेयर को नर्वसनेस आती है। इसी की ट्रेनिंग के लिए ब्रह्मा कुमारीज का ये राजयोगा मेडिटेशन मेंटल स्किल्स का प्रोग्राम जो कि जगबीर भाई राष्ट्रीय और नेशनल टीम्स के साथ मिलकर के जो आगामी टोक्यो 2020 है उसके लिए सरकार की मदद के साथ हम सब आगे बढ़ रहे हैं। आपने अपनी शुभकामनाएं दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद महावीर सिंह फोगाट जी। जैसा आप सब जानते हैं इनकी दो बेटी बबीता और गीता और धर्म पत्नी जी हम सबके बीच हैं, आपका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और अब हम ब्लेसिंग के लिए इस इनॉग्रेशन सेशन में हम सबके बीच हमारी आदरणीय बीके शशि दीदी जी जो कि हमारी स्पोर्ट्स विंग की वाइस चेयरपर्सन हैं, आपके संरक्षण में आपकी मार्गदर्शना में ये सारी जो चार दिवसीय आपके लिए सम्मेलन रखा गया है। आप हम सबको आज के इस सत्र में अपनी शुभकामनाएं देंगे। मैं निवेदन करता हूं आदरणीय बीके शशि दीदी जी।
ओम शांति। आज के उद्घाटन सत्र में हमने पूर्व वक्ताओं के द्वारा बहुत सुंदर एग्जाम्पल सुने कि किस प्रकार से मेडिटेशन के प्रयोग से जीवन के अंदर कई सफलताएं, कई प्राप्तियां उन्होंने अपने जीवन में की, और मेडिटेशन के अंदर माइंड का बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है। लेकिन माइंड क्या चीज है उसके विषय में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की, और माइंड को हमें किस तरह से अपने हाथ में रखना है, यह राज्यों के माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त होती है कि मन एक संकल्प शक्ति है, सोच शक्ति है, विचार शक्ति है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे सामने माइंड के अंदर एक मॉडल बनता है, फिर उसी मॉडल को ही हम प्रैक्टिकल में लाते हैं। तो इसलिए राज्यों के माध्यम से पहली बात हमें यही जानकारी मिलती है कि अपने आंतरिक सोच को शुद्ध, पवित्र, श्रेष्ठ और हाई रखना है। जैसा कि बताया कि माइंड सप्लीमेंट फॉर हाई परफॉर्मेंस, तो अपने आंतरिक शक्ति को, आंतरिक विचारों को, आंतरिक सोच को हमें हाई रखना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे मन के अंदर ऐसी विचारधारा आ जाती है, मैं कर नहीं सकता हूँ, मेरे पास इतनी पावर नहीं है, मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं है, टाइम नहीं है, हमारे देश के अंदर इतनी फैसिलिटीज नहीं है, हमारे पास ये नहीं है। तो ये जो सोच की एक विचारधारा हम अपने सामने लाते हैं, ये एक ऐसा मकड़ी के जाल की तरह है। वो मकड़ी का जाल इतना बड़ा बना देते हैं, वो जाल बढ़ता ही जाता है, बढ़ता जाता है, और उस जाल के अंदर हम छिप जाते हैं, अपने आप को पहचान नहीं पाते हैं। तो इसके लिए राज्यों के माध्यम से पहला हमारे अंदर ये जानकारी मिलती है कि मैं शुद्ध आत्मा, और आत्मा के विचार श्रेष्ठ, शुद्ध, महान, हाई हैं। तो इसलिए अगर हमें अपनी परफॉर्मेंस को श्रेष्ठ बनाना है तो हमें मन को अपना फ्रेंड बनाना होगा, और दूसरा मन के अंदर सेल्फ निश्चय क्रिएट करना होगा, सेल्फ क्रिएटेड फेथ। आज ऐसा हो गया है कि हम फेथ को क्रिएट करना चाहते हैं, थोड़ा समय विश्वास आएगा, थोड़ा समय डगमगाएगा, थोड़ा समय सोच में चले जाएंगे, चाहे कुछ भी हो हमें सेल्फ के अंदर फेथ को क्रिएट करना है। जब सेल्फ के अंदर फेथ क्रिएट करते हैं तो हमारी विचारधारा ऑटोमेटिकली परिवर्तित होती है, और साथ साथ हम अपने माइंड को अपना फ्रेंड बना रखें। जब अपने माइंड को अपना फ्रेंड बनाएंगे, आप कहेंगे माइंड को फ्रेंड कैसे बनाएं? कभी अच्छा विचार आएगा, कभी बुरा विचार आएगा, कभी नेगेटिव आएगा, कभी इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा, कई बार तो ईगो आ जाएगा, कभी अभिमान आ जाएगा, कभी सुपेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, कई प्रकार की हमारे सामने लेयर्स आती रहती हैं। तो इन लेयर्स को लेवल में लाने के लिए पहला कदम है कि मन के अंदर श्रेष्ठ चिंतन, और वो चिंतन जैसा कि पूर्व वक्ताओं के द्वारा सुना कि अगर हम लास्ट में अभ्यास करेंगे तो मुश्किल हो जाता है। कहा भी जाता है कि आग लगने पर कुआं खोदेंगे तो कब कुआं खोदा जाएगा, कब आग बुझाई जाएगी। तो इसके लिए हमें दिन में 5 बार, कम से कम दिन में 5 बार अभ्यास करना। पहला अभ्यास है जो कि आपका कोई भी टाइम नहीं लेगा, जैसा कि आप प्रातःकाल उठते हैं, नहा धोकर के तैयार हो जाते हैं, 3 मिनट से 5 मिनट के अंदर आप साइलेंस में बैठें, सेल्फ कॉन्सेंट्रेट करें, सेल्फ का चिंतन करें। और दूसरा, जब आप अपने खेल के क्षेत्र में जाते हैं या अपने व्यवसाय के लिए जाते हैं या कारोबार के लिए जाते हैं, उस समय मन के अंदर साइलेंस का अभ्यास करते हुए ये संकल्प करते हुए कि आज मैं श्रेष्ठ कार्य करने जा रहा हूँ, आज का मेरा कार्य श्रेष्ठ होगा, मुझे अपने जीवन के अंदर सफलता मिलेगी, मेरी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, वो 3 या 5 मिनट अभ्यास करें। और तीसरा है, जब आप खेल कर रहे हैं, खेल करने के बाद जब थक जाते हैं और बीच में 2 मिनट टाइम मिलता है, हम खिलाड़ियों को देखते हैं जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, खेल करना होता है, वो साइड में जाकर के अप एंड डाउन कई प्रकार की एक्सरसाइजेस करते ही रहते हैं। उन फिजिकल एक्सरसाइजेस के साथ साथ 3 मिनट के लिए माइंड को साइलेंट की अगर आप पावर देंगे, वेव्स देंगे, वो इतनी जबरदस्त एनर्जी क्रिएट हो जाएगी, वो एनर्जी आपकी परफॉर्मेंस के अंदर बहुत ज्यादा सुधार लाएगी और शक्ति लाएगी। और चौथा प्रैक्टिस है हमारी शाम के टाइम, जब आप अपना कारोबार पूरा करके अपने घर में आते हैं, 2 मिनट साइलेंस में बैठें, 3 मिनट साइलेंस में बैठें, और लास्ट है जब आप सोने जा रहे हैं, क्योंकि सारे दिन जो कारोबार किया होता है वो सारे दिन का सब एक्टिविटीज, सब एक्शन रात को सोने से पहले माइंड के ऊपर असर करते हैं। आज ऐसा हुआ, आज ऐसा नहीं होना था, मेरे फ्रेंड ने मुझे अच्छी तरह से नहीं करने दिया, मैंने बहुत प्रैक्टिस की लेकिन मेरी सफलता नहीं मिली। तो उसके लिए मेडिटेशन हमें यही सिखाता है कि रात के समय आज जो सारे दिन किया वो बहुत अच्छा किया, उसको बिंदी लगाएं, फुल स्टॉप लगाएं, और अभी मैं आत्म स्वरूप में स्थित करके विश्राम करूं और कल प्रातः मेरी परफॉर्मेंस बेस्ट होगी। तो सारे दिन के लिए अगर हम 5 बार भी ये प्रैक्टिस करते हैं तो दिस प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जैसा कि पूर्व वक्ताओं के द्वारा हम सुन रहे थे कि हमें क्या करना है, प्रिपेयर करना है, तो प्रिपेयर के लिए 3 शब्द याद रखने हैं, 3 बार पी। पी, फर्स्ट पी इज मेंट फॉर पर्पस, कि मेरा पर्पस क्या है, मैं जिस खेल के क्षेत्र में हूं, चाहे कबड्डी में हूं, चाहे मैं क्रिकेट में हूं, चाहे बॉक्सिंग में हूं, चाहे रेसलर हूं, चाहे वॉलीबॉल में हूं, मेरा पर्पस क्या है। मुझे ऐसा नहीं करना है कि एक खेल में गए दूसरे दिन दूसरे खेल में, क्योंकि इस खेल में मैं ठीक नहीं कर पाता हूं, डेली हर थोड़े दिन के बाद, हर 15 दिन के बाद अपने गेम्स को चेंज करते रहें, वो नहीं। लेकिन जिसको चुना है वो पर्पस मेरे सामने हो। और दूसरा पीस मेंट फॉर प्रिपरेशन, कि मुझे अपने आप को प्रिपेयर करना है, जिसको हम कहते हैं जितना आप प्रिपेयर करेंगे, प्रिपेयर में भी एक है मेंटली प्रिपरेशन, एक है फिजिकल प्रिपरेशन, एक है ऐसी जिस फील्ड के अंदर आप प्रिपेयर करेंगे वो प्रिपरेशन 3 प्रकार की है। पहले अपने माइंड को प्रिपेयर करना है, दूसरा प्रैक्टिस में प्रिपेयर करना है, तीसरा प्रिपेयर करना है कि जिस क्षेत्र में जा रहा हूं मुझे सफलता मिलेगी और मेरी सफलता है ही। और तीसरा है पी, पी इज मेंट फॉर प्रैक्टिस, कि जितना हम प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो जितना हम प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें चाहे हम हारें या जीतें, हम आपको एक बहुत अच्छी सी बात बताएं, जब हार शब्द कहते हैं तो हार से दिल के अंदर बहुत कईयों को तो धक्का लग जाता है। ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं जब फेल होते हैं शॉक में आ जाते हैं, जाकर के ऐसा कदम उठा लेते हैं। इस विद्यालय के अंदर, इस विद्यालय के संस्थापक पिता श्री जी ने हमें एक बात कही थी कि हार शब्द कभी नहीं कहना है। तो उन्होंने ऐसा ही कहा था कि 2 टीम है, 2 टीम में एक है नंबर 1, दूसरा है नंबर 2। आखिर 2 टीम में एक तो नंबर 1 आएगा, दूसरा सेकंड आएगा, वो तो अंडरस्टूड है। ऐसे तो हम नहीं कहेंगे कि ये जीत गया, ये हार गया है। तो पिता श्री जी ने हमें ये सिखाया, कभी भी ये नहीं कहो कि हार गए हैं। हमें याद आता है कि पिताश्री जी के साथ बैडमिंटन खेलते थे, जब 93 ईयर्स के वो पिताश्री जी और खेलने वाले कोई 20 साल, कोई 25 साल, कोई 10 साल, कोई 15 साल, और पिताश्री जी की हाइट और उनकी परफॉर्मेंस इतनी हाई लेवल की थी, उसको देखते ही कोई भी देख सकता था कि इतनी जबरदस्त पर्सनैलिटी सामने है। तो जब जीत खेलते थे तो पिताश्री जी सदा ही जीत लेते थे, तो फिर क्या करते थे पिताश्री जी, बच्चे निरुत्साहित ना हो जाएं तो बच्चों को ऐसा खिलाते थे कि बच्चे जीत जाएं। तो बच्चे कहते थे आज तो बाबा हार गए, तो बाबा कहते हारे नहीं, बोलो बाबा सेकंड नंबर में आए। हम फर्स्ट नंबर में गए, बाबा सेकंड नंबर में आए, तो फर्स्ट और सेकंड मिलकर के दोनों आगे दो टीम बन जाएंगी, एक एक दो ग्यारह हो जाएंगे। तो बाबा ने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि आप ऐसा शब्द भी मुख से बोलो जो आपके मन के ऊपर, आपके परफॉर्मेंस के ऊपर और आपके सामने वो शब्द जो है आपको गिराने के लिए ऐसा हो जाए। तो इसलिए हमारे खिलाड़ियों को भी सदा ये ध्यान रखना है, हार शब्द को दूसरे शब्द में लेना है। हार मीन्स हमें विजय के हार मिल रहे हैं, हारे नहीं हैं, जीते हैं और हमारा नंबर सेकंड आया है, नेक्स्ट टाइम फर्स्ट आ जाएगा। कोई है हाई लेवल में जाता है, कोई सेकंड में जाता है, कोई थर्ड ग्रेड में जाता है। तो ये ग्रेड्स हैं, ना कि हमारे ऐसे हैं कि हम हार गए हैं। तो इन ग्रेड्स से हमको कैसे फर्स्ट में जाना है उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। फिर साथ साथ हमें अपने जीवन के अंदर एक एम और जरूर रखना है कि अपने सामने अपने आप को हाई लेवल पर और हाई स्टेज पर और अपनी हाइट को सदा देखते रहना। हाई लेवल मीन्स मैं अच्छा खिलाड़ी हूँ, मेरा मन शक्तिशाली है, मैं अच्छा खेल सकता हूँ, किसी भी प्रकार की सिचुएशन को मैं पार कर सकता हूँ। ये माइंड को मोटिवेट करना है हाई लेवल के थॉट्स। और दूसरा, मैं हाई स्टेज पर हूँ कि मुझे जब मैं खेल खेलता हूँ, आपको मालूम है जब आप खेल खेलते हैं आप तो सोचते हैं आप ही खेल खेल रहे हैं, लेकिन जब खेल खेलते हैं पूरा वर्ल्ड देख रहा होता है, उस समय आप सबके सामने एक सेलिब्रिटी की तरह हैं, सारा वर्ल्ड आपको देख रहा है, एक एक सेकंड के अंदर आपकी एक्टिविटी देख रहा है, आपका एक्शन देख रहा है, आपका हाथ देख रहा है, आप सब कुछ देख रहा है। जैसे कि फिल्म के अंदर एक एक्टर रोल प्ले करता है तो सब उसे देख रहे हैं। तो उस समय ये ध्यान रहे कि सारा वर्ल्ड मुझे देख रहा है, मेरी एक्शन हाई है, हाई रहेगी। और सदा अपने आप को हाइट पर रखो। हमें पिताश्री जी कहा करते थे कि अपने आप को ऊंची स्टेज पर रखो। जब आप माउंटेन पर चले जाएं, ऊपर से आप नीचे देखेंगे। कई बार हम ऐसे स्थान पर चले जाते हैं विदेश में, 100 मंजिली मकान पे या बिल्डिंग में चले जाते हैं, ऊपर से नीचे सड़क पर देखते हैं, बड़े बड़े व्यक्ति छोटे छोटे बच्चे की तरह दिखाई, कारें ऐसी दिखाई देती हैं, खिलौने की तरह दिखाई देती हैं। जब आप अपने आप को हाई स्टेज पर रखेंगे तो ये प्रॉब्लम्स ऐसे आपको लगेगी जैसे कि कागज का शेर है, या ऐसे जैसे बच्चे छोटे थे खेल करते थे, एक कागज इधर रखा, एक कागज की पतंग बनाई, एक कागज का बोट बनाया, उसको पानी में डाला, जब बरसात होती थी कागज की बोट बना के पानी में डाल देते थे। तो ऐसे वो खेल लगेंगे जैसे कि प्रॉब्लम्स ऐसे लगेगी जैसे कि कागज की बोट है। तो इन्हीं जब पोजिशन को, इन बातों को जब हम अपने जीवन के अंदर लाना शुरू करते हैं तो आप कहेंगे कैसे लाए, लेकिन धीरे धीरे एक एक करके लेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारे के अंदर अनुभव भी बढ़ते जाएंगे और उस अनुभव के आधार से हमारे माइंड भी कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा, माइंड की कॉन्सेंट्रेशन से हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी और हम देश का नाम रोशन करेंगे और सारे विश्व के सामने हमारा भारत देश जो शुरू से लेकर के एक ऊंच और महान रहा है, भारत को ही सोने की चिड़िया कहा है, भारत विश्व का गुरु रहा है, चाहे आध्यात्मिकता के क्षेत्र में। हम आपको बताएं कि भारत देश ऐसा रहा है जहां पर ये तीर चलाना, ये सब खेल यहां से ही आरंभ हुए हैं और यहां से ही विदेशों में गए हैं और भारत ही इसका बीज है। तो हम अपनी परफॉर्मेंस से भारत देश का नाम सारे विश्व के अंदर रोशन करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप अपने क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ते रहें और बढ़ाते रहें, खुशी बांटते रहें। आपको इन एडवांस बहुत बहुत मुबारक। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शशि दीदी जी, आपने खुद भी आप अपने चाइल्डहुड में एक अच्छे स्पोर्ट्समैन रहे, स्पोर्ट्स स्विंग की इस कार्यशैली को आप कुशलतापूर्वक संभाल रहे हैं और आज कैसे हम अपने पर्पस को, अपनी प्रैक्टिस और अपनी प्रिपरेशन को, अपने ऊपर फेथ, आपने जो वक्तव्य ब्लेसिंग में प्रस्तुतिकरण दिया उनको चार लाइनों में समेटा है, जितनी होगी काली अंधियारी रात उतना ही उजियारा सवेरा होगा, जितनी होगी काली अंधियारी रात उतना ही उजियारा सवेरा होगा, आज हार का हकदार है तू तो कल जीत का सहरा भी तेरा होगा, तो कल जीत का सहरा भी तेरा होगा। बहुत बहुत थैंक्स। अभी मैं धन्यवाद प्रस्ताव के लिए, वोट ऑफ थैंक्स के लिए हमारे बीच बीके मेहरचंद जी, जो कि पंजाब जोनल कोऑर्डिनेटर करनाल से पधारे हैं। पंजाब जोन में हमारी 5 स्टेट आती हैं, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड और पंजाब। आप धन्यवाद प्रस्ताव हम सबके बीच रखेंगे आदरणीय बीके मेहरचंद जी।
ओम शांति। खुशियां आपकी आबाद रहें, खुशियां आपकी आबाद रहें, रोशन चिरागों की तरह हर दिन आप यूं ही मुस्कराते रहें, गुलशन के फूलों की तरह, गुलशन के फूलों की तरह। मंच पर उपस्थित आज के मुख्य अतिथि महोदय बहन शशि जी, वाइस चेयरपर्सन स्पोर्ट्स विंग, तथा अन्य वक्तागण, सभा में उपस्थित स्पोर्ट्समैन तथा अन्य भाई बहने, बहुत अच्छा विषय चल रहा है, क्या सफलतम खिलाड़ी हम उसको माने जो काफी गोल्ड मेडल लेकर आ जाता है, क्या उसे माने जो बहुत धन एकत्रित कर लेता है, या उसे माने जिसकी बहुत ज्यादा प्रसिद्धि हो गई हो। वास्तव में सफलतम खिलाड़ी वो है जिसका मनोबल विपरीत परिस्थितियों में एक रस रहता हो। हम जानते हैं मेजर ध्यानचंद, कितनी भी विपरीत परिस्थितियां उसके सामने आई परंतु वो एक रस रहे। राम से लेकर महाराणा प्रताप तक सभी के सभी मनोबल के धनी रहे हैं। अर्जुन को यह आवश्यक नहीं था कि वो युद्ध में जीत जाएगा, परंतु उसने अपने मनोबल को अंतिम समय तक बरकरार रखा, वो महाभारत का विजेता सिद्ध हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी देश की आजादी में, ये उनको सुनिश्चित नहीं था कि देश उनके जीवन में आजाद हो जाएगा, परंतु वो अपने मनोबल के आधार पर लड़ते रहे और उन्होंने अपने जीवन में आजादी हासिल की। मनोबल के धनी ही इतिहास बनाते हैं। ये मनोबल प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय राजयोग के माध्यम से जागृत कर रहा है। ये कला, ये टेक्निक यहां सिखाई जा रही है। ये वैभव सेठों की तिजौरियों में बंद नहीं है, नहीं ये कर्मचारियों की फाइलों में, न अधिकारियों की अलमारियों में, ये वैभव माउंट आबू के प्रांगण से बांटा जा रहा है, बिखेरा जा रहा है। प्यारे भाइयों और बहनों, मैं सर्वप्रथम आज के मुख्य अतिथि महोदय मिस्टर महावीर सिंह फोगाट, द्रोणाचार्य अवार्ड सीनियर रेसलिंग कोच चरखी दादरी से हमारे बीच में पधारे हैं, उनके लिए मैंने चार लाइनें लिखी हैं। उन्होंने अपने अनुभव में यहां कर ये हमें बतलाया कि मैंने इस जगह आकर बहुत ऊर्जा प्राप्त की है और आगे भी आते रहने का आश्वासन दिया है। आशा है कि वो अपने जीवन में अपने लक्ष्य को अवश्य ही प्राप्त करेंगे। चार लाइनें उनके लिए दे रहा हूं। पर्वत को जो धूल बना सकते हैं, पर्वत को जो धूल बना सकते हैं, उंगली से जो हिमालय उठा सकते हैं, विश्वास रखो ये आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय ऐसे हैं जो आकाश को भी धरा पे झुका सकते हैं, आकाश को भी धरा पर झुका सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्य अतिथि महोदय का। हमारी देवी बहन शशि बहन जी, आपने अभी उनके उद्गार सुने, आपके प्रति उनकी कितनी सच्ची भावना है। एक बार वर्ष में आपको इस ज्ञान सरोवर की वादियों में ले आते हैं और अच्छे अच्छे अनुभवों से लाभान्वित कराते हैं ताकि भारतवर्ष का खिलाड़ी विश्व में अपना नाम रोशन करे, वो अपनी नकारात्मक वृत्तियों को समाप्त कर सकारात्मक चिंतन की तरफ बढ़े। उनके लिए मैं चार लाइनें दे रहा हूं। फूलों की वादियों में बसेरा हो आपका, फूलों की वादियों में बसेरा हो आपका, तारों के आंगन में खूबसूरत सवेरा हो आपका। दुआ है मेरी, दुआ है ये मेरी अपनी बहन के लिए, सारे जहां से भी प्यार हो नसीब आपका, सारे जहां से भी प्यारा नसीब हो आपका। हमारे बीच में हमारी दई बहन कुलदीप दीदी जी जो के हैदराबाद से यहां पधारे हैं, स्पोर्ट्स विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और अनेक एक्टिविटीज हैदराबाद शांति सरोवर में करते ही रहते हैं। उन्होंने भी आपको आंतरिक शक्तियों को जागृत कैसे करें इसके ऊपर अपने विचार रखे और कई एग्जाम्पल दिए, उनके लिए मैं चार लाइनें दे रहा हूं। आसमान की बुलंदियों पर नाम हो आपका, आसमान की बुलंदियों पर नाम हो आपका, चांद की धरती पर मुकाम हो आपका। हम तो रहते हैं छोटी सी दुनिया में, हम तो रहते हैं छोटी सी दुनिया में, पर खुदा करे सारा जहां हो आपका, खुदा करे सारा जहां हो आपका। बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप दीदी जी। इस कार्यक्रम को इस सब रूप में लाने के लिए जो भरसक प्रयत्न करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं और कभी थकते नहीं हैं, जब भी देखो कभी इधर कभी उधर प्रोग्राम पर प्रोग्राम फील्ड में देते रहते हैं। हमारे इस स्पोर्ट्स विंग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर भ्राता जगबीर जी, जिन्होंने आपको इस संस्था की में स्पोर्ट्स विंग की क्या एक्टिविटीज हैं इस पर प्रकाश डाला, उनके लिए भी मैं चार लाइनें दे रहा हूं। बुझी हुई क्षमा के साथ परवाना क्या जलेगा, बुझी हुई क्षमा के साथ परवाना क्या जलेगा, जलती हुई क्षमा के साथ लाखों जलते हैं। जिसको खुद पर यकीन नहीं उसके साथ कोई क्या चलेगा, जिसको खुद पर भरोसा है उसके साथ जमाने चलते हैं, उसके साथ जमाने चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता जगवीर जी। हमारे बीच में हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर मिस्टर दिनेश कुमार शुक्ला जी, जो कि डिविजनल सिक्योरिटी कमिश्नर आरपीएफ बीकानेर से हमारे बीच में पधारे हैं। उन्होंने अपने अनुभव में मन की एकाग्रता पर अटेंशन दिलवाया, क्योंकि मन के एकाग्रता के बिना संसार में कोई उपलब्धि नहीं हो सकती है। जिस भी क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में कोई उपलब्धि प्राप्त करता है वो मन की एकाग्रता के आधार पर ही कर पाता है। उनका मैं आभार प्रकट कर रहा हूं चार लाइनों में। शुक्रिया शुक्रिया आप यहां पधारे, शुक्रिया शुक्रिया आप यहां पधारे, स्नेह सुमन से स्वागत करते शिव के राज दुलारे। इस प्रांगण के बाबा के बच्चे आपका स्वागत दे रहे हैं। ज्ञान सागर की फुलवाड़ी में आप आए अनोखे फूल, ज्ञान सागर की इस फुलवाड़ी में आप आए अनोखे फूल, स्वागत है सत्कार है करना भाई साहब दिल से कबूल, करना दिल से कबूल। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे ईश्वर सिंह दहिया जी जो कि रेसलिंग कोच साक्षी मलिक के हैं, रोहतक से पधारे हैं, बहुत अच्छा लगा वो आज यहां आए और अपने अनुभवों से कितना उन्होंने लाभवंत कराया। उनका जो लक्ष्य था वो उन्होंने हासिल किया और हमें आशा है कि वो आगे भी अपने जीवन भर उपलब्धियां करते रहेंगे। उनके लिए भी मैं चार लाइनें दे रहा हूं। जो सफर इख्तियार करते हैं, जो सफर इख्तियार करते हैं वही मंजिलों को पार करते हैं। बस एक बार चलने का हौसला रखो मेरे दोस्त, बस एक बार चलने का हौसला रखो मेरे दोस्त, ऐसे मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं, रास्ते भी इंतजार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया साहब। हमारे बीच में मिस्टर वीरेश वर्मा जी इंडियन स्केटिंग टीम कोच सिकंदराबाद से पधारे हैं। उन्होंने अपने आशीर्वचन में अपने अनुभव बताते हुए कहा कि मेरा यहां पर आने का बहुत सौभाग्य है और खिलाड़ी अनुशासित रहें तो वो उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं, क्योंकि अनुशासन पर उन्होंने जो बल दिया, क्योंकि अनुशासन के बिना तो कभी भी कोई प्राप्ति नहीं की जा सकती, अनुशासित होना तो खेल जगत में अनिवार्य है, तो उनके हम आभारी हैं। उनके लिए मैं चार लाइनें दे रहा हूं। पर्वतों को काट कर राह बनाने का दम रखते हैं हम, पर्वतों को काट कर राह बनाने का दम रखते हैं हम, घिर के तूफानों से उन्हें मजा चखाने का दम रखते हैं हम। ये तो तरस आ जाता है आसमान की खामोशी को देखकर, ये तो तरस आ जाता है आसमान की खामोशी को देखकर, वरना उसका भी सीना चीर कर रोशनी को फैलाने का दम रखते हैं हम, रोशनी को फैलाने का दम रखते हैं हम। बहुत बहुत धन्यवाद जमा साहब। हमारे बीच में कैप्टन टी जायसवाल इंडियन नेवी मुंबई से पधारे हैं। उन्होंने भी अपने अनुभव शेयर करते हुए कितना अच्छा बताया कि मैंने 7 दिन का कोर्स भी किया है जो कि इस संस्था में फाउंडेशन कोर्स है। जब वो कोई कर लेता है तो उसको ये पता चलता है कि ब्रह्मा कुमारी संस्था क्या है। माउंट आबू आकर भी आपने काफी अनुभव किया और जीवन में इस आधार पर सफलताएं अर्जित की, आपने मन की शक्ति को पहचाना और यहां की सारी कार्य प्रणाली को भी अच्छे ढंग से देखा। मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं। चार लाइनें आपके लिए दे रहा हूं। जिंदगी के इम्तिहान में तुम्हें सफलता मिलती रहे, जिंदगी के इम्तिहान में तुम्हें सफलता मिलती रहे, तुम्हारे मन में सदा आशा की कली खिलती रहे। अगर अंधेरों से लड़ाई है जिंदगी के हर मोड़ पर, अगर अंधेरों से लड़ाई है जिंदगी के हर मोड़ पर, तो जिंदगी कभी न बुझने वाली मिसाल की तरह जलती रहे, मिसाल की तरह जलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद जायसवाल जी। हमारे मन सचिव बहुत कुशल ढंग से उन्होंने मंच का संचालन किया। और बहुत ही अच्छे वक्ता भी हैं, परंतु उनको आज ये जो चांस दिया है मन संचालन का, मैंने पहली बार ही उनको देखा मन संचालित करते हुए, मुझे बड़ा अच्छा लगा। हमारे ज्योति भाई जी देखिए, हमारे स्पोर्ट्स विंग के एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबर भी हैं और बहुत कर्मठ हैं और जहां तहां जाते रहते हैं सेवाओं में, उनके लिए मैं चार लाइनें दे रहा हूं। ये कौन आया रोशन होगी महफल किसके नाम से, ये कौन आया रोशन होगी महफल किसके नाम से, बाबा के घर में सूरज निकला है कल शाम से, बाबा के घर में सूरज निकला है कल शाम से, किस कदर शुक्रिया अदा करूं उस खुदा का अल्फाज नहीं मिलते, कार्यक्रम इतना खूबसूरत न होता यदि आज आप मन संचालन न करते, यदि आप आज मन संचालन न करते। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति भाई जी। अब आप कहेंगे हमारे लिए कुछ नहीं बोला अभी तक। मैं आई वे स्पोर्ट्स मैन का भी बहुत आभार प्रकट कर रहा हूं चार लाइनों से, क्योंकि आप मुझे सबसे बड़ी खुशी है जो अब तक बैठे हैं। आपने बहुत धैर्य रखा है मुझे सुनने के लिए, मैं आपका सबसे ज्यादा आभार करूंगा। सुंदर कार्यक्रम बना है बड़ी धूमधाम से, सुंदर कार्यक्रम बना है बड़ी धूमधाम से, आज शिव बाबा भी देख रहा है परम धाम से, आज शिव बाबा भी देख रहा है परम धाम से। इसलिए मैं कह रहा हूं पधारे हुए सभी मेहमान से आप सभी का भी स्वागत है, आप सभी का स्वागत है दिलो जान से, दिलो जान से। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत ही सुंदर प्रस्तुतिकरण बीके मेहरचंद भाई, हम भी आपके इस कमाल के शब्दों से आपका धन्यवाद करते हैं। एक बार तालियां बजाएंगे मेहरचंद भाई के लिए, जिन्होंने सभी के लिए अपनी कलम से फूल बिखेरे, धन्यवाद किया। और अब हम निवेदन करेंगे बहनों से कि आज हमारे इस इनॉग्रेशन सेशन के जो अतिथिगण हैं, मुख्य अतिथिगण, उन्हें ईश्वरीय सौगात और प्रसाद देंगे। आदरणीय बीके शशि दीदी जी, बीके कुलदीप दीदी जी हमारे मेहमानों को ईश्वरीय सौगात और प्रसाद देंगे। साथ साथ एक अनाउंसमेंट कि इसी सेशन को कंप्लीट करने के बाद पीछे आर्ट गैलरी है, वहां एक फोटो सेशन, हम सभी का एक ग्रुप फोटो सेशन होगा, हम सीधे वहीं चलेंगे। तत्पश्चात शाम को आज फीलिंग वाइब्रेंट एक नेक्स्ट जो लेक्चर है 4:30 बजे हमारे बलराम तलरेजा जी, जो कि मुंबई से आए हैं, बहुत ही जबरदस्त लेक्चर आप सबको देंगे। आप सभी समय पर इस हारमोनी हॉल में पहुंचेंगे और सम्मान कर रहे हैं हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री फोगाट जी का, आदरणीय कुलदीप दीदी जी। हम सबके बीच हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर दिनेश कुमार शुक्ला जी, ईश्वर सिंह दहिया जी, वीरेश यामा जी फ्रॉम सिकंदराबाद, कैप्टन टी जयसवाल जी इंडियन नेवी मुंबई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इस प्रोग्राम के इस सेशन के बाद पीछे आर्ट गैलरी में हम सभी चलेंगे, वहां एक फोटो सेशन होगा। और उस फोटो को कलेक्ट करने के लिए आप अपने अपने ग्रुप लीडर, आप ज्योति भाई मुझे दे सकते हैं और अपने फोटो का ऑर्डर दे दें, ताकि हम उतने फोटोग्राफ्स बना करके शाम को या सुबह आपको उपलब्ध करा दें। धन्यवाद। हम सभी 2 मिनट उस परमपिता परमात्मा की याद में बैठेंगे। थैंक यू वेरी मच।